the mighty God unveiled before us. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered in English on Monday evening, June 29, 1964, for the Full Gospel Businessmen's Fellowship International Convention at the Blevev Stedford Hotel in Philadelphia, Pennsylvania, USA. Qadre Mutli Khuda hamare samne ashkara ho gaya. Ye pegam Brother William Marion Branham ki janib se bunyadi taur par English mein Peer ki sham 29 June 1964 Full Gospel Businessman Fellowship International Convention Blevev Stedford Hotel Philadelphia Pennsylvania USA mein diya gaya.
Have a few scriptures written down that I would like to speak to you from, and I trust that God will bless our feeble efforts.
Mere paas kalam ki chand ayat likhi hui hain, jin mein se main aapke samne baat karunga, aur main bharosa rakhta hoon ki Khuda hamari in kamzor koshishon ko barkat dega.
Now, many people has wondered why we are so odd and so noisy. You know, this is kind of a type of a convention than what people are used to seeing. And usually everything is kind of a cut and dried form.
Ab bahut se log hairat zada hain ki hum kyun shor karne wale aur mukhtalif hain. Aapko maloom hona chahiye ye ek mukhtalif kism ki convention hai. Unse jinko log dekhne ke aadi ho chuke hain aur amuman har ek cheez kaant chaant ki ek shakal mein hai.
But when we come to these conventions, which has been my privilege now for several years since we first started, we don't hardly know what we're going to do.
Lekin jab hum in ibadat mein aate hain, jo ke mere liye ek imtiazi haq hai, ab iska aghaz unhone kai saal pehle kiya tha. Hum mushkil se bhi jaan nahi paate ki hum kya karne wale hain.
We just come and surrender ourselves. That's the only thing that we know to do. And God does the rest of it. So that makes us a very peculiar acting people.
Hum sirf aate hain aur khud ko hawale karte hain. Sirf yahi cheez hai jise hum karna jante hain aur baki sab kuch khuda karta hai taaki hame bahut khaas kaam karne wale log banaye.
The other day someone said, you know, you people are really an oddball. And I said, well, I suppose we are.
Kisi din kisi ne kaha, aap jante hain, आप लोग वाकई एक अजीब सी चीज हैं. मैंने कहा, ठीक है, मेरे ख्याल में हम हैं.
And I remember one of the conventions, Brother Troy was telling me one time of a little German that said he received the baptism of the Holy Spirit.
और मुझे याद है उन इबादत में एक दफा भाई ट्रॉय मुझे एक छोटे जर्मन के मुतालिक बता रहे थे जिसने बताया कि उसने रूल कुछ का बपतिस्मा पाया था.
And the next day in the shop where he was working, he would raise his hands and praise the Lord and speak in tongues and just carry on awful.
Aur uske agle hi din us dukan mein jahan wo kaam kar raha tha, usne apne haath upar uthaye aur phir khudawand ki tareef karne laga aur bade josh mein gair zubane bolne laga aur bolta hi gaya.
Finally, the boss came by and said, Heine, what's the matter with you? He said, oh, I got saved. He said, my heart's just overflowing with joy.
आखिरकार बॉस उसके करीब आया और कहा, हैनी, आपके साथ क्या मसला है? उसने कहा, ओ, मैं निजात पा गया हूँ. उसने कहा, मेरा दिल खुशी से झूम रहा है.
He said, well, you must have been down with that bunch of nuts down there. He said, yes, glory to God. So thank the Lord for the nuts.
उसने कहा, ठीक है. तुम जरूर उन नटों के ग्रोह में गए होगे. उसने कहा, जी हाँ, खुदा के नाम को जलाल मिले. और कहा, उन नटों के लिए खुदावंद का शुक्र हो.
He said, you take the automobile, come down the road, said you take all the nuts out of it, you haven't got nothing but a bunch of yunk. And that's just about right, you know.
उसने कहा, आप एक गाड़ी लें और सड़क पर चले जाएं. और कहा, आप उसमें से सारे नट निकाल दें तो बाकी लोहे की डंडियों के अलावा कुछ नहीं बचेगा. बस यही बात है. और आप जानते हैं, तकरीबन यही बात ठीक है।
One day in California, I was going down the streets of Los Angeles and I seen a man had a sign on his breast and here...
एक दिन मैं कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस की सड़क की तरफ जा रहा था और वहीं पर मैंने एक शख्स को उसके सीने पर निशान के साथ देखा।
He said, I am a fool for Christ. And everybody was looking at him and I noticed him turning around and looking after he passed by.
और उसने लिखा था, मैं मसीह के लिए बेवकूफ हूँ और हर कोई उसे देखे जा रहा था। उसके करीब से गुजरने के बाद मैंने पीछे मुड़कर उन लोगों को गौर से देखा।
I thought I would follow with the rest of them and on the his back he said, whose fool are you? I suppose we're all kind of odd one to the other, you know.
और मैंने सोचा कि मैं इन बाकी लोगों के साथ पीछे चलूंगा और चलता गया और अपने पीछे उस शख्स ने लिखा था, तुम किसके लिए बेवकूफ हो। जी हाँ, मेरे ख्याल में हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, आप ये जानते हैं।
But, you know, the world gets in such a rut. Something different makes it so odd to the people does think it's something's wrong. And usually God has to do something so unusual to get the people back to the Bible again.
लेकिन आप जानते हैं, दुनिया ऐसी रीत में फंसी हुई है, जब तक कोई मुख्तलिफ चीज इसे फर्क ना बनाए, उस वक्त तक के लोग इसमें कोई खराबी ख्याल करें, और अमूमन खुदा को कोई अजीब काम करना होता है कि लोगों को दोबारा वापस बाइबल में लाए।
I can imagine that Noah was kind of a nut to that scientific age that he lived in because they could prove there was no water in the skies.
मैं ये ख्याल कर सकता हूँ कि नूह एक किस्म का नट था उस साइंसी दौर के लिए जिसमें वो रहता था, क्योंकि वो साबित कर सकते थे कि आसमानों में पानी नहीं है।
But God said there would be some there, so Noah preaching and believing that he became a nut.
लेकिन खुदावर ने फरमाया वहाँ कुछ होगा, बस नूह ने मनादी करते हुए और ये यकीन रखते हुए कहा था, इसलिए वो एक नट बन गया था।
And I'd imagine that when Moses went down in Egypt, he was kind of a nut to Pharaoh. But remember, Pharaoh was a nut to him too. So we realize that.
मैं ये ख्याल करूँगा कि जब मूसा मिस्र में गया, तो वो एक किस्म का फ़राउन के सामने नट था। लेकिन याद रखें, फ़राउन भी उसके सामने एक नट था। बस हम ये महसूस करते हैं।
Even Jesus was considered a heretic. It's right. Martin Luther was a nut to the Catholic Church, and John Wesley was a nut to the Anglican.
यीशु भी बिद्दती ख्याल किया जाता था। ये ठीक है। मार्टिन लूथर भी कैथोलिक कलीसिया के लिए एक नट था, और जॉन वेस्ली भी एंग्लिकन के लिए एक नट था।
So, you know, it's about time for another nut, don't you think so?
बस आप जानते हैं, तकरीबन यही वक्त अब दूसरे नटों के लिए है, क्या आप ऐसा नहीं सोचते?
But before there can be a nut, you know, there has to be a bolt first, the thread to it.
लेकिन इससे कबल कोई नट हो, आपको मालूम है, पहले एक बोल्ट होना चाहिए जिसकी चूड़ी से चूड़ी मिलती हो।
So, you know, Noah being a nut, he takes the nut, it pulls a bolt, pulls something together and holds something together.
लिहाजा आप जानते हैं, नूह एक नट होते हुए वो अगर एक नट को लें तो वो बोल्ट को अपनी तरफ खींचता है और एक साथ ही खींचकर पकड़ लेता है।
So, Noah was able to pull all that would believe into the ark out of the judgments for being a nut.
बस एक नट होते हुए नूह इस काबिल था कि उन सब ईमानदारों को सजा में से खींचकर कश्ती में ले आए।
We find out that Moses pulled the church out of Egypt by being a nut. That's right.
हम जानते हैं कि मूसा ने कलीसिया को मिस्र से बाहर एक नट की हैसियत से निकाला, ये दुरुस्त है।
I think we need a nut now to pull the bride out of the church. We need something now.
मेरे ख्याल में अब हमें एक और नट की जरूरत है कि दुल्हन को कलीसिया से बाहर खींच कर निकाले। हमें अभी किसी एक दूसरे शख्स की जरूरत है।
So we are very odd sort of people, and I thought tonight if the Lord was willing, I would try to read some scriptures pertaining to this and would speak to you just a few moments and try to show you why we are such an odd people.
بس ہم بہت مختلف قسم کے لوگ ہیں اور میں نے سوچا آج رات اگر خداوند کی مرضی یہی ہے تو میں کچھ کلام مقدس کی آیات پڑھنے کی کوشش کروں گا جو اس کے بارے میں ہیں اور آپ سے چند لمحے بات کروں گا اور آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کہ کیوں ہم اتنے مختلف لوگ ہیں.
Let us turn in the scriptures now to Philippians, the second chapter, 1 and 8, 2 Corinthians 3, 6. And let us read as we believe God's word.
آئیے اب ہم کلام کی طرف چلیں. فلپیوں 2:1-8 اور دوسرا کرنتھیوں 3:6. آئیے ہم پڑھتے ہیں جیسا کہ ہم خدا کے کلام پر یقین رکھتے ہیں.
Now, just before we read, let us bow our heads for prayer.
اور اب آئیے پڑھنے سے پہلے ہم دعا کے لیے سر جھکائیں.
Gracious Heavenly Father, we are indeed a privileged people tonight to be living in this age and see the things that we see going on and to know that the time is close at hand when Jesus will come for his church. All that thrills our hearts, Lord.
پر فضل آسمانی باپ, بے شک آج رات ہم خاص لوگ ہیں اس دور میں رہنے والے ان کاموں کو دیکھ کر جنہیں ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, یہ جان کر کہ وقت قریب ہے جب یسوع اپنی کلیسیا کے لیے آئے گا. ہو یہی تو ہے جو ہمارے دلوں کو جوش دلاتا ہے خداوند.
And as we pull back the pages tonight, we pray that you'll give us a context out of this text.
اور جیسے ہی ہم صفات کو واپس پلٹتے ہیں آج رات ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں کلام میں سے ایک سلسلہ بیان دے.
And may the Holy Spirit reveal to our hearts the things that would be good and pleasing to God, for we asked it in Jesus' name. Amen.
اور روح القدس ہمارے دلوں میں ایسی باتیں ظاہر کرے جو کہ خدا کے نزدیک نیکی اور خوشی کرنے والی ہوں. ہم یسوع کے نام میں مانگتے ہیں, آمین.
You know, Lee, I'll ask you to do something. I usually ask some strange things, and I hope I'm not asking anything too strange.
آپ کو معلوم ہے, یقین کریں میں آپ سے کہوں گا کہ کچھ کریں. میں عموماً کچھ عجیب باتیں پوچھتا ہوں, اور مجھے امید ہے میں کوئی بہت عجیب بات نہیں پوچھوں گا.
But when we pledge allegiance to the flag, we all stand, and the flag passes by, we stand, which we should, and we stand to salute. Let's just stand to our feet while we read the word, if you will.
لیکن جب ہم فرما برداری کا عہد جھنڈے سے کرتے ہیں تو ہم سب کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جھنڈا قریب سے گزرتا ہے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, جو کہ ہمیں کرنا چاہیے, اور ہم سلامی دینے کو کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آئیں جب کہ ہم کلام پڑھتے ہیں تو ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں.
2 Corinthians 3:6.
دوسرا کرنتھیوں 3:6.
Who has made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit? For the letter killeth, but the Spirit giveth life.
جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا, لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے, کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے.
But if the ministration of death written and engraved on stones was glorious, so that the children of Israel could not steadfastly behold the face of Moses for the glory of his countenance, which glory was to be done away.
اور جب موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے ایسا جلال والا ہوا کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے پر اس جلال کے سبب سے جو اس کے چہرے پر تھا نظر نہ کر سکے, حالانکہ وہ گھٹتا جاتا تھا.
How shall not the ministration of the Spirit be rather glorious?
تو روح کا عہد تو ضرور ہی جلال والا نہ ہوگا.
Or if the ministration of condemnation be glorious, such more does the ministration of righteousness exceed in glory.
کیونکہ جب مجرم ٹھہرانے والا عہد جلال والا تھا تو راست بازی کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا.
Or even that which was made glorious had no glory in this respect by reasons of the glory that excelleth far. If that which is done away was glorious, how or much more that which remaineth is glorious.
بلکہ اس صورت میں وہ جلال اس بے انتہا جلال کے سبب سے بے جلال ٹھہرا، کیونکہ جب مٹنے والی چیز جلال والی تھی تو باقی رہنے والی چیز تو ضرور ہی جلال والی ہوگی.
Seeing then that we have such a hope, we use great plainness of speech, and not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which was abolished.
پس ہم ایسی امید کر کے بڑی دلیری سے بولتے ہیں، اور موسیٰ کی طرح نہیں جس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا تاکہ بنی اسرائیل اس مٹنے والی چیز کے انجام کو نہ دیکھ سکے.
But their minds were blinded, or until this day remaineth the same veil untaken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ.
لیکن ان کے خیالات کثیف ہو گئے، کیونکہ آج تک پرانے عہد نامہ کو پڑھتے وقت ان کے دلوں پر وہی پردہ پڑا رہتا ہے اور وہ مسیح میں اٹھ جاتا ہے.
But even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their heart.
مگر آج تک جب کبھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل پر پردہ پڑا رہتا ہے.
Nevertheless, when it shall be turned to the Lord, the veil shall be taken away. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty.
لیکن جب کبھی ان کا دل خداون کی طرف پھرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا نہ کہ، اور خداون روح ہے، اور جہاں کہیں خداون کا روح ہے وہاں آزادی ہے.
But we all, with open faces, behold as in a glass the glory of the Lord, the changing unto the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord.
مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح ظاہر ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں، تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ با درجہ بدلتے جاتے ہیں.
In Philippians 2 we read this, beginning with the first and reading to the 8th verse.
اور فلپیوں 2 میں ہم یہ پڑھتے ہیں، پہلی آیت سے شروع کرتے ہوئے اور 8ویں آیت تک.
If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels of mercy, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being in one accord and one mind.
اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمی اور روح کی شراکت اور رحم دلی درد مندی ہے، تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو.
Let nothing be done through strife or vain glory, but in lowliness of mind let each esteem others better than themselves.
تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو.
Look not every man on his own things, but every man also on things of others.
ہر ایک اپنے ہی حوال پر نہیں، بلکہ ہر ایک دوسروں کے حوال پر بھی نظر رکھے.
Let this mind be in you, which also was in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God.
ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا.
But made of himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man.
بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا.
And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient to death, even the death of the cross.
اور انسانی بدن میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو بہت پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت کو گوارا کیا.
Let us pray.
آئیے ہم دعا کرتے ہیں.
Heavenly Father, this great word that has been read tonight from thy holy writ, make it so real to our hearts that we will go from here like those going from Emmaus, saying, did not our hearts burn within us as he talked to us along the road? For we asked it in Jesus' name. Amen.
Asmani Bab, ye azim kalam, jo aaj raat padha gaya hai, teri paak tahreer, ise hamare dil par bahut haqeeqi bana de, ke jab hum yahan se jaye, to un amaus se jane walon ki manit kehte hue jaye, kya hamare dil hamare andar josh se nahi bhar gaye the, jab wo raah ke kinare hum se baatein kar raha tha, hum Yesu ke naam mein ye mangte hain. Amen. Aap baith sakte hain.
Now, this is a very odd text, but I think it's very suiting for the occasion. I'm going to speak on the subject of the mighty God unveiled before us.
Ab ye bahut mukhtalif kalam hai, lekin mere khayal mein mauke ki munasibat se ye bada khaas hai. Main is mauzu par baat karna chahta hoon. Qadr-e-mutlaq khuda hum par ashkara ho gaya.
Now, since there has been man, there has been a hunger in man's heart to find out where he came from and what's his reason of being here and where he's going.
Ab, jab se ye insaan bana hai, aur insaan ke dil mein ye janne ki bhook hai ki ye kahan se aaya aur iske yahan maujood hone ka sabab kya hai aur ye kahan ja raha hai.
There's only one can answer that. That's the one who brought him here. And man has always wanted to see God.
Sirf ek hi hai jo iska jawab de sakta hai. Ek wahi hai jo ise yahan lekar aaya. Aur aadmi shuru hi se khuda ko dekhna chahta hai.
Back in the Old Testament, we find out that God veiled himself from unbelievers. God has a very odd way of dealing with people.
Piche purane aidnama mein हमें मालूम होता है कि खुदा ने अपने आप को गैर ईमानदारों से छुपाए रखा और खुदा का लोगों से बर्ताव का बहुत ही अजीब सा तरीका है.
He hides himself from the unbeliever and reveals himself to the believer. God does it.
वो अपने आप को गैर ईमानदारों से छुपाता है और खुद को ईमानदारों पर जाहिर करता है. खुदा ऐसा करता है.
Jesus thanked the Father that he had hid these things from the wise and prudent and would reveal it to babes such as would learn.
Yesu ne baap ka shukriya ada kiya ke usne ye baatein akalmandon aur daanon se chupayi aur bachchon par zahir kar di.
So we find that God never changes in his nature and he's always doing his work the same.
Bas hame maloom hai ke khuda apni fitrat ko kabhi nahi badalta और वो हमेशा बिल्कुल इसी तरह अपना काम करता रहता है.
We find out in Malachi 3, he said, I am God and I change not. So he works in the same principle all the time.
हम जानते हैं मलाकी 3 में उसने फरमाया, मैं ही खुदा हूँ और मैं ला तब्दील हूँ. लिहाजा वो हमेशा ही से बिल्कुल इसी असूल पर काम करता है.
Now, we take one of the oldest books of the Bible. When Job, one of the most righteous men of his day, a perfect man in the laws of God, a servant, noble, honorable servant, even to God said, there's none like him in the earth.
अब हम बाइबल की बहुत सी पुरानी किताबों में से एक को लेते हैं. जब अय्यूब अपने वक्त के सबसे ज्यादा रास्तबाज आदमियों में से एक कामिल आदमी, खुदा के कवानीन के मुताबिक एक मुहज्जब खादम, इज्जतदार खादम था. जबकि खुदा ने फरमाया उसकी मानित जमीन पर कोई दूसरा नहीं था.
But his desire one time to see God, he knew that there was a God and he felt that he would like to see him.
लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि एक मर्तबा खुदा को देखे. उसको पता था कि खुदा है और उसने महसूस किया कि वो उसे देख लेगा.
Otherwise go to his house and knock on the door and say, I'd like to speak with you. Sit down, talk with him like we would with each other.
Ya dusri surat mein uske ghar jaun aur darwaze par dastak dun aur kahun main aap se baat karna chahta hun. Baith jaun uske sath baat karun jis tarah hum ek dusre se baat karte hain.
We have an understanding. That's why we're in these conventions where we come together and express our thoughts and we understand one another better when we talk things over with each other.
हमारे पास एक समझ है, इसलिए हम इन इबादत में यहाँ हम इकट्ठे होते हैं और अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और हम एक दूसरे को बेहतर समझते हैं। इसी तरह जब हम एक दूसरे के साथ चीजों पर गुफ्तगू करते हैं।
Ministers do that. People of all walks of life do it. Talk things over.
और खादम ऐसा करते हैं। जिंदगी के हर कदम पर लोग ऐसा ही करते हैं। वो चीजों पर गुफ्तगू करते हैं।
Job, God was so real to him. He wanted to find out if he couldn't go knock at his door and have an interview with him.
और अय्यूब का खुदा उसके साथ बड़ा सच्चा था। वो मालूम करना चाहता था अगर वो उसके दरवाजे पर दस्तक देने ना जा सका तो भी वो चाहता था कि उससे गुफ्तगू करे।
But we find out that God did speak to him, but he was veiled. He was veiled in a form of a whirlwind.
लेकिन हम जानते हैं कि खुदा उससे हमकलाम हुआ, लेकिन उसने अपना आप छुपाया। उसने बगोला की शक्ल में अपना आप छुपाया।
And he told Job to gird up his loins. He was going to speak to him like a man.
और उसने अय्यूब को कहा कि अपनी कमर कस ले। वो उससे एक आदमी की तरह कलाम करने वाला था।
And he came down in a whirlwind and spoke to Job. And he was made known to Job through the whirlwind. Yet he did not exactly see him.
और वो एक बगोले में नीचे आ गया और अय्यूब से हम कलाम हुआ। और वो बगोले में से अय्यूब पर जाहिर हुआ, फिर भी उसने बिल्कुल ठीक उसको ना देखा।
He could just hear the wind blowing and turning around in the trees, and the voice came out of the whirlwind, but God was veiled in the whirlwind.
वो सिर्फ हवा को दरख्तों में इधर उधर चलते ही सुन सका और आवाज बगोले में से होकर आई, लेकिन खुदा बगोले में छुपा हुआ था।
We find down in Africa, South Africa, they use the word Amaya, which means an unseen force.
हम जानते हैं यहाँ अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका में उन्होंने लफ्ज अमोया इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है एक अनदेखी ताकत।
And this unseen force in the whirlwind had an audible voice that spoke out to Job, yet he never seen his form, but he was veiled to him by The whirlwind.
और ये अनदेखी ताकत बगोले के अंदर एक सुनी जाने वाली आवाज थी। उसने अय्यूब से कलाम किया, तब भी अय्यूब ने उसकी शक्ल नहीं देखी, लेकिन उसने अपना आप बगोले में छुपाए रखा।
We find one of the great prophets of the Bible, Moses of the Old Testament, one of God's chosen, selected, predestined servants. He also desired to see.
हमें बाइबल में अजीम नबियों में से एक के बारे में मालूम होता है, यानी मूसा। पुराने ऐदनामे में खुदा के मखसूस किए गए, चुने हुए और मुकरर किए गए खादमों में से एक था। उसने भी खुदा को देखने की तमन्ना की।
He'd been so close to him and seen so many things of his great mystic hand going before him and doing things that only God could do.
वो उसके बहुत करीब था और उसने बहुत सारे अजीब काम उसकी कुदरत वाले हाथ से अपने सामने देखे थे, जो कि सिर्फ खुदा ही कर सकता था।
He desired to see him one day and God told him, go stand on the rock.
उसने उसको एक दिन देखने की आरजू की और खुदा ने उसको बताया, जा चट्टान पर खड़ा हो जा।
And while standing on the rock, Moses seen him pass. He saw the back of him and he said, it looked like a man. A man's back.
और चट्टान पर खड़े हुए मूसा ने उसे गुजरते हुए देखा। उसने उसकी पुश्त को देखा और उसने कहा, ये तो एक आदमी की मानित दिखाई दिया, जैसे एक आदमी की पुश्त।
Yet he did not see God. He only seen the veil of God. The Bible said, no man has seen God at any time, but the only begotten of the Father has declared him. So Moses saw him veiled as a man.
तब भी उसने खुदा को नहीं देखा, सिर्फ उसने खुदा का पर्दा देखा। बाइबल फरमाती है इंसान ने कभी खुदा को नहीं देखा, लेकिन बाप का इकलौता बेटा उसी ने जाहिर किया। लिहाजा मूसा ने उसको एक आदमी के तौर पर पर्दे में देखा।
We find that Jehovah of the Old Testament was just Jesus of the New Testament.
हम जानते हैं कि पुराने अहद नामे का यहोवा नए अहद नामे का यीशु है।
And Dr. Schofield here, we find that his word changing from form, we find the word Morpha in Greek, which means the unseen was made visible.
और डॉक्टर स्कोफील्ड यहाँ हैं। हम उसके कलाम में पाते हैं कि उसका कलाम शक्ल बदलता है। हमें यूनानी में इन मोर्फा मिलता है, जिसका मतलब है पोशीदा जाहिर किया गया।
Something that cannot, we know it's there. It can be, cannot be seen, but yet. We know that it's there.
जो कुछ नजर नहीं आ सकता, हम जानते हैं वो यहाँ है। ये हो सकता है, नहीं भी देखा जा सकता, लेकिन फिर भी हम जानते हैं वो मौजूद है।
And when he changed his form, the Martha, which means that he changed from supernatural to natural.
और जब उसने अपनी शक्ल बदली इन मोर्फा से, जिसका मतलब है कि उसने माफूकुल फितरत से फितरी शक्ल इख्तियार कर ली।
And he just changed his mask. And otherwise, it's like a drama. He was acting in the Greek when they would change their mask. Maybe one player might have acted in several different parts.
और उसने अपना रूप दीगर सूरत में तब्दील किया। ये ड्रामे या खेल की तरह है। वो किरदार अदा कर रहा था। और यूनानी में जब वो अपने चेहरे बदलते हैं, तो हो सकता है एक ही खेल में शायद एक ही अदाकार ने कई मुख्तलिफ हिस्सों में अदाकारी की हो।
And my daughter present here, they just had at the high school a drama. And they, one boy that I know played about four parts.
और मेरी बेटी यहाँ पर मौजूद है। अभी उन्होंने हाई स्कूल में एक ड्रामा किया था, और वो एक लड़का जिसे मैं जानता हूँ, तकरीबन उसने चार किरदार अदा किए।
But he would go behind the stage and change his mask in order to come out to impersonate another character.
वो स्टेज के पीछे जाता और बाहर आने की गर्ज से अपना रूप तब्दील करता, इसी तरह दूसरे किरदार का रूप धार लेता।
Now, if you will take the Old Testament prophecies concerning what the Messiah was to be, you can compare it with the life of Jesus, and you've got it exactly who Jesus was.
अब अगर आप पुराने ऐदनामे की पेशनगोइयों को लेंगे कि मसीहा को कैसा होना था, तो आप उसका मुवाजना यीशु की जिंदगी से करें, तो आप बिल्कुल ठीक समझ जाएंगे कि यीशु को कैसा होना था।
He was not just an ordinary man. He was God, Martha. He was changed from the supernatural into the natural form of a man, yet he was God manifested in the flesh, veiled by a human fleshly veil.
और वो एक मामूली आदमी नहीं था, वो अनदेखा खुदा था। उसने अपनी सूरत को एक माफूकुल फितरत सूरत से एक फितरती इंसान की सूरत में तब्दील किया। तब भी वो खुदा ही था, लेकिन बदनी खाल में होते हुए तब भी वो इंसान से छुपा हुआ था।
And you watch the Old Testament. I know that I'm speaking to a mixed up audience tonight from different parts of the world.
और आप पुराने ऐदनामे पर गौर करें। मैं जानता हूँ कि मैं आज रात मिली जुली भीड़ से मुखातिब हो रहा हूँ, जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से तल्लुक रखती है।
And we are here to find out What are we doing? Where are we getting to? What's happening? What does all this mean?
और हम यहाँ हैं ताकि जाने हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, इन सब का क्या मतलब है?
And now we find in here that if you Jewish men and women and the rabbis and in the temple in the days gone by, if they'd watched the Bible, the prophecies, instead of the traditions, they would have recognized who Jesus was.
और हम जानते हैं कि यहाँ अगर आप यहूदी मर्द और औरतें और यहूदी उस्ताद जो हैकल में अंदर होते थे उन पर गौर करें तो गुजरे दिनों में अगर उन्होंने बाइबल पर गौर किया होता कि वो पेशगोइयां बजाय रसूमात के थी तो वो पहचान जाते कि यीशु कौन था.
They would have never called him Beelzebub. They would have never have crucified him. But it all had to act out. That's part of the drama. And they were blinded on this case.
तो उन्होंने उसे कभी भी बालजबूब नहीं कहना था तो वो उसे कभी भी मसलूब ना करते लेकिन ये सब अदा होना था ये खेल का हिस्सा था और वो इस मामले में अंधे थे.
It's like many of you men, women here tonight, maybe my age or a little older. You remember here in America years ago, before the Chinese.
ये इसी तरह है जैसे आप में से बहुत से मर्दों खवातीन आज रात यहाँ हैं. हो सकता है मेरे हम उम्र हों या मुझसे थोड़े से ज्यादा उम्र के. आपको याद होगा यहाँ अमेरिका में कई साल पहले इससे कबल के चीनी लोग आए.
My brother just introduced here that come on my mind when I was talking to him how that they couldn't speak English and they run the laundry.
मेरा भाई जिसका अभी तारुफ कराया गया वो मेरे जहन में आ गया है जब मैं उससे बात कर रहा था किस तरह वो चीनी लोग किया करते थे. वो अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे और वो धोबी काट चलाते थे.
And you go to his laundry to get your laundry done. The Chinese laundryman would take a tag and would tear it in a certain way. You'd take one part of the tag, he'd take the other part.
अगर आप अपने कपड़ों को धुलाने और इस्त्री कराने के लिए उस धोबी काट में जाएं, तो वो चीनी धोबी काट के लोग एक रसीद लेंगे और एक खास तरीके से उसे फाड़ेंगे. आप रसीद का एक सिरा लेंगे और दूसरा वो लेंगे.
But when you come back to claim your belongings, those two pieces of paper had the dovetail.
लेकिन जब आप वापिस आते हैं और अपनी चीजों का दावा करते हैं तो कागज के वो दो टुकड़े जिन्हें फाड़ा गया था.
And if it didn't dovetail just exactly right, you couldn't impersonate it in any way, because he had one piece and you had the other.
अगर वो दो टुकड़े आपस में बिल्कुल ठीक तौर पर नहीं मिलते तो आप उनको किसी तौर पर भी धोखा नहीं दे सकते थे. सबब ये कि उनके पास एक हिस्सा था और आपके पास दूसरा.
And if it impersonated, then you had a right to claim what was yours. And then you got what belonged to you when you possessed the other part of the contract.
और अगर ये जाली होता तब आपके पास हक था कि आप अपने वाले का दावा करते. तब आप हकदार हैं कि वो आप ही का है जबकि आपके पास मुआयदे का दूसरा हिस्सा मौजूद था.
So is it tonight when we got the other part of the contract when God tore his son into at Calvary and taken the body up for a sacrifice and sent the spirit down to us that once lived in a man Jesus.
बस ऐसा ही है आज रात जबकि हमें मुआयदा का दूसरा हिस्सा मिल गया जब खुदा ने अपने बेटे को कलवरी पर दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जिस्म को ऊपर उठाए हुए कुर्बानी के लिए और रुलकुस को नीचे हमारे पास भेजा जो कि कभी एक इंसान यीशु में रहता था.
That same God is unveiled tonight in the form of the Holy Ghost. Those two pieces has to come together. Then you're part of the contract.
बिल्कुल वही खुदा आज रात रुलकुस की सूरत में पोशीदा है. उन दो टुकड़ों को यकजा होना है फिर आप मुआयदे के हकदार हैं.
God did this to be better known to man when he made himself man.
खुदा ने ऐसा ही किया कि इंसान के सामने पूरी तरह जाहिर हो जाए जबकि उसने खुद को इंसान बना दिया.
I was reading a story some years ago and in this story it said a great noble king, I forget the name of him just now, wasn't thinking about speaking of the story.
मैं कुछ साल कबल एक कहानी पढ़ रहा था और इस कहानी में ये बताया गया एक अजीम आली जरफ बादशाह, अभी मैं उसका नाम भूल गया हूँ, मैं कहानी सुनाने के मुतलक नहीं सोच रहा था।
Perhaps fiction, but it leads us to a point that gives us a background on what we want to say.
शायद ये अफसाना है, लेकिन ये हमें उस नुक्ते की तरफ ले जाता है जो हमें एक पसे मंजर देता है जिस पर हम बात करना चाहते हैं।
This king, he was such a noble king and such a great lover of his subjects. But one day before his guard and his royalty, he said, "Today you see me for your last time for many years."
वो बादशाह, वो एक ऐसा आली जर्फ बादशाह था और वो अपनी रियाया से इतना प्यार करने वाला था, जबकि एक दिन उसने अपने मुहाफिज और रियाया के सामने उसने कहा, आज तुम आखिरी मर्तबा मुझे देखते हो, फिर कभी मुझे कई सालों तक ना देखोगे।
And his guard and his nobles said to him, good king, why do you say that? Are you going to a foreign country somewhere? You become an alien.
उसके मुहाफिजों और उसके उमरा ने उससे कहा, आलीजा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्या आप कहीं एक परदेसी बनने के लिए परदेश जा रहे हैं?
He said, no, I'm staying right here. He said, I'm going out amongst my subjects. I'm going to become a peasant.
उसने कहा, नहीं, मैं यहीं ठहर रहा हूँ। ठीक है, उसने कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, अपने लोगों के दरमियान मैं एक देहाती बनने जा रहा हूँ।
I'm going to cut wood with the wood chopper. I'm going to till the ground with the toiler. I am going to prune the vines with those who prune the vines.
मैं कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटने जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ कि जमीन में खेती बाड़ी करने वालों के साथ मेहनत करूँ। मैं जा रहा हूँ कि जमीन की खुदाई करने वाला बनूँ। मैं अंगूर के दरख्त की कांट छांट करने जा रहा हूँ, उनके साथ जो अंगूर के दरख्तों को छांटते हैं।
I'm going to be one of them in order to get a better acquainted with what they are doing.
मैं उनमें से एक बनने जा रहा हूँ ताकि बेहतर मालूमात हासिल करूँ कि वो क्या कर रहे हैं।
And I love them and I want to be more acquainted with them personally. They won't know me, but yet I want to be acquainted with them in that way.
और मैं उनसे प्यार करता हूँ और मैं जाती तौर पर उनके साथ रहकर ज्यादा आगाही हासिल करना चाहता हूँ। वो मुझे नहीं जानेंगे, लेकिन तब भी मैं यूं ही आगाही हासिल करना चाहता हूँ।
And the next morning when his delegates, all of his people seen him or the ones who's in the palace, take off his crown and lay it down upon the seat, the throne, and take his robe off and put on peasant's clothes, walk out amongst the common people.
और अगली ही सुबह जब उसके नुमाइंदों और उसके लोगों ने उसे देखा कि एक शख्स जो के महल में था अपना ताज उतारता है और उसे नीचे रखता है, यानी तख्त पर अपने शाही चोगा को उतारता है और एक देहाती के कपड़े पहनकर आम लोगों के दरमियान चला जाता है।
Now, in that little story, we find out then about God.
अब इसी तरह इस छोटी सी कहानी से हमें पता चलता है और फिर हम खुदा के मुतल्लक भी ऐसा ही पाते हैं।
They said to the king, said, King, we want you, we love you, we want you to remain king.
उन्होंने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, हम आपको चाहते हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम चाहते हैं कि आप ही बादशाह रहें।
But he wanted to become one of them to know them better, that they know him better, really what he was. It would display to them what he really was.
लेकिन वो उनमें से एक बनना चाहता था ताकि उनको बेहतर तौर पर जाने और वो भी उसे बेहतर तौर पर जान लें कि असल में वो क्या था, ये उन पर जाहिर हो जाए कि वो हकीकत में क्या था।
And that's what God did. He changed himself from being Jehovah God to become one of us, that he might suffer, he might taste death, he might know what the sting of death was and take the penalty of death upon himself.
और ऐसा ही खुदा ने किया, उसने अपने आप को यहोवा खुदा से तब्दील कर दिया ताकि हम में से एक बने कि वो दुख उठाए और मौत का मजा चखे, वो जान सके कि मौत का डंक कैसा था और मौत की सजा अपने ऊपर ले ली।
He laid aside his crown and his robe and became one of us.
उसने अपने ही ताज और चोगा को एक तरफ रख दिया और हम में से एक बन गया।
He washed feet with the lowly. He dwelt in the tents with the poor. He slept in the woods and in the streets with those who were underprivileged.
उसने छोटा बनकर आजजी के साथ पांव धोए, वो खेमों में गरीब गुरबा के साथ रहा, वो जंगलों और गलियों में उनके साथ सोया जो कमतर थे।
He became one of us that he might understand us better and that we might understand him better.
वो हम में से एक बन गया ताकि हमें वो बेहतर तौर पर समझ सके और हम भी उसे बेहतर तौर पर समझ सकें।
Now I think in that we find out the changing himself what he did.
अब मेरे ख्याल में उसी में हम उसकी खुद की तब्दीली को पाते हैं जो उसने की।
If you'll notice, he came in the name of three sons. He came in the name of the Son of Man, and in the Son of God, and the Son of David.
अगर आप गौर करें तो वो तीन बेटों के नाम से आया, वो इब्ने आदम के नाम से, इब्ने खुदा के नाम से और इब्ने दाऊद के नाम से आया।
He came as Son of Man. Now in Ezekiel 2:3, Jehovah himself called Ezekiel the prophet, the Son of Man. Son of Man means a prophet.
अब जैसा कि वो इब्ने आदम के तौर पर, तो हिजकेल 2:3 में खुद यहोवा हिजकेल नबी को इब्ने आदम यानी ए आदम जात पुकारता है। इब्ने आदम का मतलब है नबी।
He had to come that way to fulfill Deuteronomy 18:15, which Moses said, "The Lord your God shall raise up among you a prophet like unto me."
उसने इसी तरह से आना था अस्तिश्ना 18:15 को पूरा करने, जिसके मुतल्लिक मूसा ने कहा था, खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे ही दरमियान से नबी बरपा करेगा जो मेरी मानिंद होगा।
He never called himself the Son of God. He referred to himself the Son of Man because he had to come according to the Scripture.
उसने कभी भी खुद को खुदा का बेटा नहीं कहा, उसने खुद को इब्ने आदम का हवाला देकर ही मुखातिब किया क्योंकि उसे कलाम के मुताबिक ही आना था।
See, he had to make those two pieces of torn paper, the Old Testament prophecy and his own character, to be exactly the same. So he come the Son of Man. Come in that form.
देखें, उसे उन कागज के दो फटे हुए टुकड़ों को यकजा करना था, जैसे कि पुराने अहदनामे की नबुवत और उसका अपना करदार, वो बिल्कुल ठीक एक जैसे बन जाएं। लिहाजा वो इब्ने आदम की सूरत में आया।
Then we find after his death, burial and resurrection, he came on the day of Pentecost as Son of God, God the Spirit in the form Holy Ghost.
फिर हम जानते हैं उसकी मौत, दफन होने और जी उठने के बाद वो पेंतीकोस के दिन पर खुदा के बेटे के तौर पर आया, खुदा यानी रूल कुछ की सूरत में।
What was he doing? He was changing himself, making himself known to his people in a different form.
वो क्या कर रहा था? अपने लोगों पर खुद को मुख्तलिफ सूरतों में जाहिर करते हुए वो खुद को तब्दील कर रहा था।
Like the Holy Spirit, which is God, he came to deal through the church ages as Son of God, the Holy Spirit.
रूह अल-कुदस जो कि खुदा है, वो आया कि खुदा के बेटे की हैसियत से कलीसियाई अदवार में काम करे जो कि रूह अल-कुदस है।
But in the millennium he comes as Son of David to sit on the throne of David, king. He was to take the throne of David. He's on the Father's throne now.
लेकिन हजार साला बादशाहत में वो इब्ने दाऊद की हैसियत से दाऊद बादशाह के तख्त पर बैठने को आता है। उसे दाऊद का तख्त लेना ही है, वो अब बाप के तख्त पर है।
And then he said, He that overcometh shall sit with me on my throne as I've overcome and sat on my father's throne.
और फिर उसने कहा वो जो गालिब आए वो मेरे साथ तख्त पर बैठेगा जैसे कि मैं गालिब आया हूँ और अपने बाप के तख्त पर बैठा हूँ.
So he in the millennium he'll be son of David. What is it? The same God all the time just changing his mask.
बस वो हजार साल बादशाहत में इब्ने दाऊद होगा. ये क्या है? ये वही खुदा है जो हमेशा ही बस अपना चेहरा तब्दील करता है.
I am to my wife a husband.
मैं अपनी बीवी के लिए एक शोहर हूँ.
Did you notice the Syrophoenician woman said, "Thou son of David, have mercy." He never even bothered him at all.
क्या आपने गौर किया? सूरफनीकी औरत ने कहा, ए इब्ने दाऊद रहम फरमा. उसने उस पर बिल्कुल तवज्जो ना दी.
She had no rights to call him that. She had no claims on him as son of David.
उसको कोई हक नहीं था कि वो उसे यूं बुलाए. उसका उसको इब्ने दाऊद कहने का कोई हक नहीं था.
He's the son of David to the Jew. And now he came, but when she called him Lord, he was her Lord. Then she got what she asked for. Now, he's just changing himself.
क्योंकि वो यहूदियों के लिए इब्ने दाऊद था. लेकिन जब उसने उसको खुदावंद कहा, वो उसका खुदावंद था. तब उसे मिल गया जो उसने मांगा था. अब जैसे कि वो खुद को तब्दील कर रहा था.
Now in my home, I'm three different people. In my home, my wife has claims on me as husband. My daughter out there, she doesn't have any claims on me as husband. I am her father.
अब मैं अपने घर में तीन मुख्तलिफ लोगों की तरह हूँ. मेरे घर में मेरी बीवी मुझ पर शोहर होने का दावा करती है, जबकि मेरी बेटी ऐसा नहीं करती. वो मुझ पर शोहर होने का दावा नहीं करती क्योंकि मैं उसका बाप हूँ.
And my little grandson there, I'm grandfather to him. So he has no right to call me father. I'm not his father. My son is his father. I am his grandfather. But I'm still the same man.
और मेरा छोटा पोता भी है क्योंकि मैं उसका दादा हूँ. लिहाजा उसका कोई हक नहीं कि मुझे बाप कहे. मैं उसका बाप नहीं हूँ. मेरा बेटा उसका बाप है. मैं तो उसका दादा हूँ. लेकिन तब भी मैं एक ही शख्स हूँ.
And God, what he does, he just changes himself to become to that generation, to make known himself to that people.
और खुदा वो क्या करता है? वो सिर्फ खुद को बदलता है कि वो उस नस्ल का बन जाए ताकि खुद को लोगों पर जाहिर करे.
And that's what we're here to find out tonight. And what way is God supposed to make himself known to this people and in this time?
और यही है जो हमें यहाँ आज रात मालूम करना है कि खुदा इस वक्त किस तौर पर ख्याल करता है कि मैं खुद को लोगों पर जाहिर करूं.
He changes his mask, he changes his act, but he doesn't change his disposition. He doesn't change his nature. He just changes his mask from one to another.
उसने अपना चेहरा तब्दील किया. वो अपना करदार बदलता है लेकिन वो अपना मजाज नहीं बदलता. वो अपनी तबीयत या मजाज नहीं बदलता. वो एक शख्स से दूसरे में सिर्फ अपना चेहरा बदलता है.
He does it to reveal himself more plain to the people that they might know who he is and what he is.
वो अपने आप को लोगों पर ज्यादा साफ जाहिर करने को ऐसा करता है ताकि वो ये जान सकें कि वो कौन था और वो क्या है.
In Hebrews 1 we read God in sundry times and divers manners spake to the fathers through the prophets. But in this last days through his son Jesus.
हम अब्रानियों 1 में पढ़ते हैं, अगले जमाने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बा हिस्सा और तरह बतरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाने के आखिर में हमसे अपने बेटे यीशु की मार्फत कलाम किया.
Now the prophets Jesus said when he was here on earth they were gods.
अब नबियों के बारे में यीशु ने कहा था जब वो यहाँ जमीन पर था कि वो खुदा हैं।
You call those gods who the word of God came to and the scriptures cannot be broken, he said. Said how you can condemn him then when he's the son of God.
तुम कहते हो जिन नबियों के पास खुदा का कलाम आया वो खुदा थे और कलाम की आयात को तब्दील नहीं किया जा सकता। उसने ऐसा ही कहा था। कहा आप उसे कैसे मुजरिम ठहरा सकते हैं जबकि वो खुदा का बेटा है।
See, the word of God is lauded to each age what it's to be. And Jesus was the fulfillment of all the prophecies.
देखें, खुदा का कलाम हर दौर में हालात बताने वाला रहा है कि क्या होने वाला है, और यीशु ही उन तमाम पेशनगोइयों की तकमील था।
In him dwelt the fullness of the Godhead bodily. It was in him.
और अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। सारी मामूरी उसी में थी।
He was the one that was in Joseph. He was the one who was in Elijah. He was the one who was in Moses. He was the one who was in David, a rejected king.
यूसुफ में वही था, एलिया में भी वही था, मूसा में भी वही था, बिल्कुल वही दाऊद में भी था, जो कि एक रद्द किया गया बादशाह था।
His own people had rejected him as king, and he went out of the courtyard, a little afflicted fellow crawling around, did not like his government, his system, and he spit upon him.
एक बादशाह के तौर पर उसके अपनों ने उसे रद्द कर दिया था, और जैसे ही वो सहन से बाहर गया, एक छोटा सा तकलीफ देने वाला शख्स चलते हुए उसकी तरफ आया, जो उसकी बादशाहत और उसके निजाम को पसंद नहीं करता था, और उसने उस पर थूका।
And the guard pulled his sword, said, "But I'll leave that dog's head on him, spitting on my king." And David, maybe not realizing what he was doing at the time, but he was anointed.
और मुहाफिज ने अपनी तलवार खींची और कहा, क्या मैं इस कुत्ते का सर कलम कर दूं जो मेरे बादशाह पर थूक रहा है? और हो सकता है दाऊद ये महसूस ना कर रहा हो कि उस वक्त वो क्या कर रहा था, लेकिन वो मसा शुदा था।
And he said, "Let him alone. God's told him to do this." And he climbed up on the hill and wept over Jerusalem, a rejected king.
और उसने कहा, इसे छोड़ दो। खुदा ने उसे बताया कि ऐसा कर, एक रद्द किए बादशाह की तरह, वो पहाड़ी पर चढ़ गया और यरूशलम पर रोया।
Did you notice a few hundred years from then, the son of David being spit upon in the streets and was on the hill, same mountain, looking down over Jerusalem, a rejected king, and cried, "Jerusalem, how often I have hovered you as a hen did her brood, but you would not."
क्या आपने गौर किया? फिर चंद सौ साल बाद इब्ने दाऊद पर थूका गया, उन्हीं गलियों में और पहाड़ी पर, उसी पहाड़ से एक रद्द किए गए बादशाह की तरह, यरूशलेम पर निगाह की और पुकार उठा, ऐ यरूशलेम, कितनी ही बार मैंने चाहा कि तुझे अपने परों तले छुपा लूं, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों तले छुपाती है, लेकिन तूने ना चाहा।
He never changed his nature, because Hebrews 13:8 said he's the same yesterday, today, and forever.
उसने फिर भी अपनी फितरत को ना बदला, सबब अब्रानियों 13:8, वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है।
God was made flesh in order to die to redeem us from sin. That's why he changed himself to be a man.
खुदा जिस्म में जाहिर हुआ ताके मरे और हमें गुनाह से मखलसी दे, इसलिए उसने खुद को तब्दील किया कि एक इंसान बने।
We see in St. John 12:20, the Greeks had heard of him. Now there's no man can ever hear of him except their heart burns to see him, like Job and the prophets of old. They all wanted to see him.
हम देखते हैं मुकद्दस योहन्ना 12:20 में यूनानियों ने उसे मुनादी करते सुना था। अब कोई शख्स भी उसकी उस वक्त तक नहीं सुन सकता जब तक उसका दिल उसे देखने को बेचैन ना हो, जैसे अय्यूब और पिछले जमाने के नबी, वो सब उसे देखना चाहते थे।
So this Greek came to see him. They came to Philip, which was of Bethsaida, and said, "Sir, we would see Jesus."
बस ये यूनानी उससे मिलने को आए, वो फिलिपस के पास आए जो बैतसैदा से था, और कहा, जनाब, हम यीशु को मिलना चाहते हैं।
The Greeks wanted to see him, but they were unable to see him because he was in the temple of his humanity. God was in Christ reconciling the world to himself.
यूनानी उसे देखना चाहते थे, लेकिन वो इस काबिल ना थे कि उसे देखें, क्योंकि वो अपनी इंसानी हैकल में था। खुदा ने मसीह में होकर खुद दुनिया से मेल मिलाप कर लिया।
Now we find that in this, these Greeks could not see him, and notice the very words that Jesus expressed to them afterwards.
अब हम जानते हैं कि उस हालत में यूनानी उसे देख ना सके, और गौर करें, बिल्कुल वही अल्फाज जिसका यीशु ने उनके सामने इजहार किया।
He said, except the corn of wheat falls into the ground, dies, it abides alone.
उसने फरमाया, जब तक गंदम का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता तो वो अकेला ही रहता है।
In other words, they would never be able to see him in the change in the mask that he was in then because he was veiled in human flesh.
दूसरे लफ्जों में वो उसे फिर बाद में उस तब्दीली चेहरा में कभी ना देखेंगे क्योंकि वो इंसानी बदन के पर्दा में था।
But when this corn of wheat fell into the ground, then it would bring forth all races. He was sent to the Jews, of course, at that time. But this corn of wheat must fall.
लेकिन जब ये गंदुम का दाना जमीन में गिरा, फिर उसने उन तमाम नस्लों को जन्म दिया। बेशक वो उस वक्त तक यहूदियों के पास भेजा गया था, लेकिन उस गंदम के दाने को जमीन में गिरना जरूरी था।
Veiled God in human flesh, hidden from unbelievers, but being revealed to believers.
पोशीदा खुदा का इंसानी जिस्म में होकर, जो के गैर ईमानदारों से छुपा हुआ था, लेकिन वो ईमानदारों पर जाहिर हो गया।
In John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld him, the only begotten of the Father, full of grace.
यूहन्ना 1, इब्तदा में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था, और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल।
Now, in the beginning was a word. A word is a thought expressed.
अब इब्तदा में कलाम था, कलाम एक सोच का इजहार है।
In the beginning he wasn't even God. Now our English word today, God, means an object of worship.
यहाँ तक के इब्तदा में वो खुदा भी नहीं था। अब आज हमारी अंग्रेजी का लफ्ज खुदा, जिसका मतलब है जिसकी प्रस्तिश की जाए।
How confusing it is to the mind. You can make somebody a god. You can make anything a god.
ये जहन को कितना उलझाता है। आप किसी शख्स को भी खुदा बना सकते हैं। आप किसी चीज को भी खुदा बना सकते हैं।
But in the Old Testament, in Genesis 1, in the beginning, God, the word is used Elohim. Elohim means the self-existing one.
लेकिन पुराने ऐदनामे में पदेश 1 में इब्तदा में खुदा के लिए लफ्ज एलोहिम इस्तेमाल हुआ है। एलोहिम का मतलब है खुद वजूद रखने वाला।
What a difference the word Elohim is to our word God. Elohim means the self-existing one.
कितना फर्क है लफ्ज एलोहिम में और लफ्ज खुदा में। एलोहिम का मतलब है खुद वजूद रखने वाला।
We cannot be self-existing. We cannot be almighty, omnipotent, omnipresent, omniscient. That Elohim expresses all of that. We cannot be that.
हम खुद से वजूद नहीं रख सकते। हम कादरे मुतलिक नहीं हो सकते। बहुत ज्यादा इख्तियार वाले नहीं हो सकते। हर जगह मौजूद नहीं हो सकते। सब कुछ जानने वाले नहीं हो सकते। जो एलोहिम इन सब का इजहार करता है, हम वो नहीं हो सकते।
The tree that you make a god out of, or the building, it's not self-existing.
वो दरख्त जिसमें से आप खुदा बनाते हैं या वो अमारत, ये खुद वजूद में नहीं आती।
So God in the beginning was life, the eternal one. In him was attributes, and those attributes became words, and the word became flesh.
बस इब्तदा में खुदा था, जो के अबदी जिंदगी थी, उसमें सफात थी, और सफात कलाम बन गईं, और कलाम मुजस्सम हुआ।
Jesus was the Redeemer, and to redeem means to bring back. And if it has to bring it back, it had to be somewhere to be brought back to.
यीशु फिदिया देने वाला है, और फिदिया का मतलब है वापिस लाना। अगर उसे इसे वापिस ही लाना है, तो इसे कहीं और होना पड़ता ताकि वापिस लाया जाए।
So you see, all people will never be able to see it because all people wasn't in the beginning in God's thought. See?
बस आप देखते हैं कि तमाम लोग इस काबिल नहीं होंगे कि इसे देखें, क्योंकि तमाम लोग इब्तदा में खुदा की सोच में नहीं थे, समझे?
Look at the priest. When they see him express himself exactly with the word, what he was, they said it's Beelzebub. That showed where their nature was. It was in the modern thought of the day.
काहिनों को देखें, जब उन्होंने देखा कि वो खुद को बिल्कुल कलाम के साथ बयान करता है जो कि वो था, उन्होंने कहा ये बालजबूब है, जिसने जाहिर कर दिया कि उनकी फितरत कहां से थी, ये उस जमाने की जदीद सोच थी।
But when the little prostitute that he met at the gate and told her, expressed his Messiah sign by telling her what she had done.
लेकिन जब उस कस्बी से वो फाटक पर मिला तो उसे अपना मसीहाना निशान बताया कि उस औरत ने क्या क्या किया था।
Well, she said, Sir, I perceive that you are a prophet. We know the Messiah, when he comes, he will tell us all these things.
इसलिए उस औरत ने कहा, जनाब मुझे लगता है कि आप एक नबी हैं, हम जानते हैं कि जब मसीह आएगा तो वो हमें ये तमाम बातें बताएगा।
She was recognizing him as the Messiah, the anointed one, because he met the scripture qualifications.
वो उसे मसीह की हैसियत से पहचान रही थी कि वही मसाशुदा है, क्योंकि वो कलाम की अहलियत पर पूरा उतरा था।
Don't you see the two pieces of paper were coming together? We know that when the Messiah cometh.
क्या तुम नहीं देखते कि दो कागज के टुकड़े इकट्ठे हो रहे हैं? वो कहती है, हम जानते हैं कि मसीहा जब आएगा।
Now, God might have had to interbreed this and that to get this certain ting of the bell, like the motor.
अब शायद खुदा ने ये और वो मिक्स किया, एक कायल करने वाले की तरह, ताकि घंटी की खास आवाज निकले।
But when Jesus turned and said, I am he that speaks with you, there was no such an expression as Beelzebub.
लेकिन जब यीशु पीछे फिरा और फरमाया, मैं ही वो हूँ जो तुझसे बात करता हूँ, तो वहाँ कोई भी बालजबूब जैसा तासुर न था।
She left her water pot, ran into the city and said, come see a man who told me the things that I have done. Isn't this the very Messiah? See?
उसने अपना पानी का गड़ा वहीं छोड़ दिया, शहर की तरफ दौड़ गई और कहा, आओ एक शख्स को देखो जिसने मेरे सारे काम मुझे बता दिए जो मैंने किए थे, क्या ये बिल्कुल वही मसीहा नहीं, समझे?
Now what did this putting the old scripture with the experience that Jesus was giving to her, what did it do? It made the Messiah.
अब ये क्या हुआ? इस तजर्बे के साथ पिछले कलाम को शामिल करते हुए यही यीशु उसे बता रहा था उसने क्या किया, और उसने उसे मसीह बना दिया।
And did you notice quickly her sins were forgiven because at the beginning she was redeemable because she was in God's thinking at the beginning.
और क्या आपने गौर किया, जल्द ही उसके गुनाह माफ कर दिए गए, क्योंकि शुरू में वो नजात या मखलसी के काबिल थी, क्योंकि वो इब्तदा ही से खुदा की सोच में थी।
So it redeemed her or brought her back when she seen the express scripture manifested of Jehovah, what he was, what he is.
बस यीशु ने उसे मखलसी दी या उसे वापिस लाया जब उस औरत ने देखा कि यहोवा का मुजस्सम शुदा कलाम जाहिर हो गया है, जो वो था और जो वो है।
Now when Jesus come, if he had come with Noah's message, it wouldn't have worked. To build an ark and float out. It wouldn't have worked.
अब जब यीशु आया, अगर वो नूह के पैगाम के साथ आता तो ये काम नहीं करता। एक कश्ती बनाता और तैराता तो काम नहीं होना था।
But that Noah was a portion of God. He acted a peculiar way because he was peculiar. And his message was peculiar because it was the word being made manifest.
लेकिन नूह खुदा का एक हिस्सा था और उसने एक खास तरीके या अपने ही ढंग पर काम किया, क्योंकि वो मखसूस था اور اس کا پیغام عجیب تھا کیونکہ یہ وہی کلام تھا جو مجسم ہونے والا تھا.
He could not come with Moses' message because it wouldn't have worked. Moses was God in a portion made manifest.
وہ موسیٰ کے پیغام کے ساتھ نہیں آ سکتا تھا کیونکہ اس سے یہ کام نہیں ہونا تھا. موسیٰ پر خدا کا ایک حصہ ظاہر کیا گیا تھا.
He was the word expressed for that hour. But Jesus could not come in that. The Bible never said he would come in that way.
وہ ایک ایسا کلام تھا جس کا اظہار اس وقت پر کیا گیا، لیکن یسوع اس طریقے سے نہیں آیا. بائبل میں بھی کبھی یہ نہیں فرمایا گیا کہ یسوع اس طریقے سے آئے گا.
But when he came expressed exactly like the testament had said he would be expressed, then all those who was redeemable believed it. Because they were the thoughts of God.
لیکن جب وہ آیا اس نے بالکل ٹھیک اظہار کیا جیسا کہ اس عہد نامے میں کہا گیا تھا اسے اظہار کرنا ہوگا. تب وہ تمام جو نجات کے قابل تھے انہوں نے اس کا یقین کیا کیونکہ وہ خدا کی سوچ میں تھے.
The attributes of him at the beginning was made flesh and redeemable and was brought back to God.
ابتدا میں اس کی ذات کی تمام صفات مجسم ہوئیں اور مخلصی دینے والا بنا اور واپس خدا کے پاس لے آیا.
As many as received him, to them gave he the power to become sons of God. Because they were redeemable. They were from the beginning in the expression.
جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا کیونکہ وہ نجات پانے کے قابل تھے. وہ شروع ہی سے سوچ میں تھے.
If we could stop here a moment, if it would be possible, and think of that tonight, of the message of the hour, the express thoughts of Jehovah.
اگر ہم ایک لمحہ یہاں رکتے ہیں، اگر یہ ممکن ہو اور اس کے متعلق آج رات سوچتے، اس وقت کے پیغام کے متعلق جو یہوہ کے خیالات کا اظہار تھا.
Before the foundation of the world, we were told our names were put on the Lamb's book of life.
بنائے عالم سے پیشتر ہمیں بتایا گیا ہمارے نام برا کی کتاب حیات میں شامل کر دیے گئے تھے.
Then we can see the two sides, as I first said, why one is odd to the other. It must be that way. It always has been that way, and it always will be that way.
پھر ہم دو پہلو دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا. کیوں؟ ایک پہلو دوسرے والے سے فرق ہے. اسے ضرور ہی اس طرح کا ہونا چاہیے. یہ ہمیشہ ایسا ہی تھا، یہ ہمیشہ ایسا ہی ہے اور یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا.
He was the word and the word was made flesh and dwelt among us.
وہ کلام تھا اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا.
Now, God back in the days of the Old Testament, we find that after he had appeared to his people in different forms, he veiled himself behind old badger skins. God hiding behind badger skins at his mercy seat.
اب خدا پیچھے پرانے عہد نامے کے دنوں میں ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں پر مختلف صورتوں میں ظاہر ہوا. اس نے اپنے آپ کو پرانی تخت کی کھال کے پیچھے چھپائے رکھا تھا. خدا اپنے رحم کے تخت پر تخت کی کھال کے پیچھے چھپا ہوا تھا.
We find that how that Solomon, when he dedicated the temple of the Lord, and these badger skins was hanging there, the veil, how that he came in as a pillar of fire and as a cloud and went down behind there and veiled himself to the outside world.
ہم جانتے ہیں کیسے سلیمان نے جب اس نے خداوند کی ہیکل کو مخصوص کیا اور یہی تخت کی کھالیں وہاں لٹک رہی تھی جو کہ پردہ تھا، کیسے وہ آگ کے ستون کی حیثیت سے اندر داخل ہوا اور بادل کے طور پر اور وہاں پیچھے چلا گیا اور خود کو دنیا سے باہر پردے میں چھپا لیا.
But by faith, Israel knew that he was back there. They knew he was there regardless of what any of the heathen worlds had to say. He was hid from the unbeliever.
لیکن ایمان سے اسرائیلی جانتے تھے کہ وہ وہاں پیچھے تھا. انہیں معلوم تھا وہ وہیں تھا. اس سے قطع نظر کہ کوئی بے دین دنیا میں سے اس کو کچھ کہتا، वो गैर ईमानदारों से छुपा हुआ था।
But the believer by faith knew he was back there. They had mercy and he was at his mercy seat, which was a great secret.
लेकिन ईमानदार ईमान से उसे जानते थे कि वो पीछे वही था, उन पर रहम हुआ था और वो अपने रहम के तख्त पर था, जो कि एक बहुत बड़ा बेद था।
You know, in the Old Testament, to enter behind that skin was death. Now, to stay from behind it is death. Then, to enter into his glory was death. Now, to stay away from his glory is death.
आप जानते हैं, पुराने अहदनामा में उस पर्दे के अंदर जाने में मौत थी, मगर अब इस पर्दे से बाहर रहने में मौत है। तब उस जलाल में दाखिल होने से मौत थी, मगर अब इस जलाल से बाहर रहने में मौत है।
That happened, of course, at the rending of the veil at Calvary, when the veil was rent, the old veil.
बेशक ये कलवरी पर पर्दा फटने की वजह से हुआ, ये पुराना पर्दा फट गया।
Now to stay out of his presence is death. Then to enter his presence was death. See, it changes back and forth, and you must find the scripture to see what day we're living in.
और अब उसकी हजूरी से दूर रहना मौत है, मगर तब उसकी हजूरी में रहना मौत थी। समझे, ये तब्दीली आगे और पीछे की है, और जरूर है कि आप कलाम में से तलाश करें, ये समझते हुए कि हम किस दिन में रह रहे हैं।
Now, when the veil was rent at Calvary, the mercy seat came into plain view. But what happened? It was hanging on Calvary, dripping in blood.
अब कलवरी पर पर्दा दो हिस्सों में फट गया, तब रहम का तख्त साफ नजर आने लगा। लेकिन क्या हुआ था? खून में लतपत ये कलवरी पर लटक रहा था।
As they had tucked blood year after year at the cleansing of the sanctuary and the sprinkling of the mercy seat.
जैसे ही वो साल बा साल खून लेते थे, पाक तरीन मकाम को धोते और रहम के तख्त पर छिड़काव करते।
There, God, with his great mighty stroke of lightning power, split the old badger veil from top to bottom, and the mercy seat came into plain view.
वहीं पर खुदा ने अपनी जोरदार ताकतवर बिजली की गर्ज के साथ ऊपर से नीचे तक तुक्स की खाल के पर्दा को फाड़ दिया और रहम का तख्त वाजे तौर पर नजर आने लगा।
The real genuine Lamb of God was hanging in plain view on Calvary. The real mercy seat. When God had paid the price himself.
बिल्कुल हकीकी खुदा का बरा कलवरी पर साफ तौर पर लटक रहा था, असल रहम का तख्त, जब खुदा ने खुद से कीमत चुका दी।
And become one of us, and it manifested himself as a man to get acquainted with us, and we to be acquainted with him.
और हम में से एक बन गया और खुद को एक इंसान के तौर पर जाहिर कर दिया, हमारे साथ वाकफियत रखने को, ताकि हम उससे वाकिफ हो जाएं।
The mercy seat was in plain view of all Israel on that day of the atonement.
कुफारे के उस दिन तमाम बनी इसराइल पर रहम का तख्त पूरी तरह वाजे था।
But alas, the traditions of the church fathers in that day had, by their traditions, had veiled the true mercy seat from the people.
लेकिन अफसोस, उन दिनों कलीसियाई बुजुर्गों की रस्मों पर, उन्हीं रस्मों की बिना पर लोगों ने असल रहम के तख्त पर पर्दा डाला हुआ था।
If they would have known the scripture, each piece would have come like the Chinese tag.
अगर उन्हें कलाम का इल्म होता, तो हर एक टुकड़ा उस चीनी टुकड़े की तरह वापिस आ जाता।
The Old Testament prophecy would have been fulfilled, and it was. And if they'd been taught the scripture, they would have seen the mercy seat.
पुराने ऐदनामे की पेशनगोई को पूरा होना ही था, ये ऐसा ही था। और अगर उन्हें कलाम सिखा दिया गया होता, तो वो रहम का तख्त भी देख लेते।
As Moses said here, that to this day their veil is still over their hearts, they don't see it.
जैसा कि मूसा ने कहा, उसी दिन से वो पर्दा में हैं, ये अभी तक उनके दिलों पर है, वो इसे नहीं देख सकते।
But he was God, the suffering and the atonement. He was the genuine mercy seat standing in full view.
लेकिन वो फिदिया देने वाला और दुख सहने वाला खुदा था. वो एक असल हकीकी रहम का तख्त था जो एक भरपूर मंजर में साफ था.
As we sang to him, lo, behold him in plain view. There he is, a mighty conqueror, since he ripped the veil in two.
जैसे हमने गीत गाया, देखो उस पर निगाह करो जो वाजे है. वो एक ताकतवर फाते है जब से उसने पर्दे को दो टुकड़ों में फाड़ा.
See, he came the mercy seat hanging in clear view of the congregation. But them being under the popular opinion.
देखो वो रहम का तख्त आ गया, जमात में साफ तौर पर लटक रहा है, लेकिन उन्हें एक वाजे राय के मुतैत होना है.
Now, men and women and delegates of this convention, I want to say this without respect to person, but in the view of today, in view of what we are here for today, I'm afraid that the traditions of the fathers, the church fathers, has hid this from too many people.
अब ख्वातीनो हजरात और इस कन्वेंशन के नुमाइंदगान, मैं कतई नजर किसी शख्स से आपसे ये कहना चाहता हूँ, लेकिन आज के नुक्ता नजर में, इस नुक्ता नजर में जिसके लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं, मैं बुजुर्गों की रस्मों से डरता हूँ, यानी कलीसियाई बुजुर्गों से जिन्होंने बहुत से लोगों से उसे छुपाए रखा.
Since the Holy Ghost has come and this last days is prophesied and the veil has been rent, too many people try to hang to their traditions of the fathers.
जब से पाकरू इन आखिरी याम में आया है, जैसा कि नबुवत की गई थी, और पर्दा चाक हो गया है, बहुत से लोगों की कोशिश है कि अपने बुजुर्गों की रसूमात को लटका दें.
And that's why they can't see this extreme joy and peace and things that the church has today. Yet it's in plain view of those who believe.
और इसीलिए वो इतनी बड़ी खुशी और सलामती को देख नहीं सकते, और वो काम जो कलीसिया के पास आज हैं, ताहाल उनको वाजे तौर पर नजर आते हैं जो ईमान रखते हैं.
He hid the word, the promised word of this day. Now, the traditions has made a veil. They say that the days of miracles is past.
उसने इस दिन के वादे के कलाम को छुपाए रखा. अब रसूमात ने एक पर्दा ओढ़ा हुआ है. वो ये कहते हैं कि मौजजात के दिन गुजर गए.
A man spoke to me, a fine, cultured gentleman in Tucson, Arizona, where I live. I'd had a meeting at the Ramada, and we'd been speaking at the businessman's convention where the Lord Jesus had come present and done great things.
एक आदमी ने मुझसे कहा, एक अच्छा तहजीब याफ्ता शख्स ट्यूसॉन एरिजोना में, जहां मैं रहता हूं, मेरी रमादा में इबादत थी, और हम बिजनेसमैन कन्वेंशन पर गुफ्तगू कर रहे थे, जहां खुदावन यीशु आ मौजूद हुआ और बड़े अजीम काम किए.
And this Christian gentleman came to me and he said, a minister of the church, fine man, and he said, Brother Branham, you are trying to project to the people an apostolic age. He said, and when the apostolic age has ceased.
और ये मसीही शख्स मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, कलीसिया का खादम नेक इंसान है, और उसने कहा, भाई ब्रैनम, आप लोगों को रसूली दौर की मनसूबाबंदी के लिए तैयार कर रहे हैं. उसने कहा, जबकि रसूली दौर खत्म हो चुका है.
And I said, I pray thee, my brother, show me when the apostolic age ceased in the scripture.
मैंने कहा, मेरे भाई, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, मुझे दिखाओ कलामे मुकद्दस में कब रसूली दौर खत्म हुआ.
I said, the apostolic age began on the day of Pentecost. And as Peter said on the day of Pentecost, the promise is unto you and to your children and to them that are far off, even as many as the Lord our God shall call. When did it cease?
मैंने कहा, रसूली दौर का आगाज पेंतिकोस के दिन में हुआ और ये जारी है. पेंतिकोस के दिन पत्रस ने कहा, ये वादा तुमसे और तुम्हारी औलाद से और उन दूर के लोगों से भी है, यहाँ तक कि जितनों को खुदावंद हमारा खुदा बुलाएगा। ये कब खत्म हुआ?
If God is still calling, then the apostolic age still is in session.
और खुदा अब भी बुला रहा है और रसूली दौर अब तक रवा है।
And so that is where the people try to blindfold so many people by the traditions of the elders, as it was then, and you fail to see why the people are so elated and so enthused.
और पस इसी तरह से लोग बुजुर्गों की रसूमात से बहुत से लोगों की आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश करते हैं, जैसा कि तब था, और आप ये देखने में नाकाम रहे कि क्यों इतने ज्यादा लोग इस पर फखर करने वाले और जोश से भरे हुए हैं।
And these conventions are such an oddball, such a strange thing to other people. It's because that they see they broke through those barriers.
और ये इबादत गैर मामूली हैं और दूसरे लोगों के सामने ऐसी अजीब हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उन्होंने वो सारी रुकावटें दूर कर दी।
They broke through those veils into the presence of God, where they see the manifested promise of this hour made manifest before the people. They see what God promised.
उन्होंने उन पर्दों को चाक कर दिया खुदा की पाक हजूरी में दाखिल होकर, जहां वो देखते हैं ये इस वक्त का जाहिर शुदा वादा लोगों के सामने जाहिर कर दिया गया। वो देखते हैं जिसका खुदा ने वादा किया।
In Joel 2:28, he promised that in these last days there would be a lot of rain poured out upon the people in the last days.
यूएल 2:28 में उसने वादा किया कि इन आखिरी दिनों में हर फर्दे बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा इन आखिरी दिनों में।
I think the Greek word there is kenosis, which means that he emptied himself out, not in the way that we would say, like something was inside of somebody that he emptied out, but he poured himself out.
मेरे ख्याल में यूनानी लव्स केनोस, जिसका मतलब है उसने खुद को खाली कर दिया, ना के उस तरह से जो हम कहेंगे, जैसा कि कोई चीज किसी शख्स के अंदर थी और उसने खाली कर दिया, बल्कि उसने खुद को अंडेल दिया।
He changed his imartha. He changed from what he was to what he is.
उसने अपनी अनदेखी सूरत को बदल दिया। उसने उस सूरत से जो वो था, उसमें जो वो है।
He never changes his nature, but on the day of Pentecost, he changed himself from being the Son of Man to the Son of God.
उसने कभी अपने मजाज को नहीं बदला, लेकिन पेंतिकोस के दिन पर उसने खुद को इब्ने आदम से इब्ने खुदा में बदल दिया।
He came not with the people, he came in the people. See, the same God to carry his ministry on through in this great age.
वो लोगों के साथ नहीं आया, बल्कि वो लोगों में आया, समझे? बिल्कुल वही खुदा इस अजीम दौर में अपनी खिदमत को जारी रखने के लिए।
He prophesied in the Bible that there would come a day that would not be neither day or night, but in the evening time it should be light.
उसने बाइबल में पेशनगोई की थी कि एक दिन ऐसा आएगा जो न रात और न दिन होगा, लेकिन शाम के वक्त में रोशनी होगी।
Now the sun geographically rises in the east and sets in the west. It's the same sun all the time.
अब सूरज जुग्राफियाई तौर से मशरिक से निकलता है और मगरिब में ग्रुप होता है, हर दफा ये एक ही सूरज है।
Now when the sun, S-O-N, revealed himself in the manifestation of the promised word to Israel, the eastern people,
अब बेटा S-O-N खुद इसराइल के मशरकी लोगों के सामने खुदा के वादा करदा कलाम के जहूर में जाहिर हो गया।
We've had a day of gloom. We've had enough light in the reformers and so forth that make churches and denominations and join them and come in and kiss the babies and marry the old and bury the dead and so forth and live in the church.
हम तारीकी के जमाना में थे और इसी तरह से हमारे असलाहकारों के पास काफी रोशनी थी, गिरजे बनाए और तंजीमें बनाई और उनमें शमूलियत इख्तियार करके दाखिल हो गए और बच्चों को चूमते और बूढ़ों की शादियां करते और मुर्दों को दफनाते और इसी तरह के और काम करते और कलीसिया में रहते।
But in the evening time, it shall be light, he said in the evening time, and no scripture can be broken.
लेकिन शाम के वक्त रोशनी होगी, उसने कहा, शाम के वक्त और कलाम के किसी हवाला में तब्दीली नहीं की जा सकती।
And the same S-O-N that poured out himself, kenosis, on the day of Pentecost, promised to do the same thing in the evening time. See, it's according to the promise.
और यही S-O-N जिसने अपने आप को अंडेल दिया, यानी खाली कर दिया, पेंतिकोस के दिन पर, शाम के वक्त उसने यही करने का वादा किया, समझे? ये वादे के मुताबिक है।
Get the tag together. Look what's happening. Look what he promised. Then you see where we are at. Get the thing together. You can see the unveiling of this great and mighty one.
इस हिस्सा को जोड़िए, देखें क्या हो रहा है, और देखें उसने किसका वादा किया। फिर आप देखेंगे हम कहां पर हैं। उस चीज को जोड़िए। आप इस ताकतवर और अजीम शख्स का चेहरा आया होते हुए देख सकते हैं।
Traditions has blinded the people again to these great things that's been prophesied.
रसूमात ने लोगों को दोबारा अंधा कर दिया है उन अजीम चीजों के सामने जिनकी पेशनगोई की गई थी।
Moses, when he came forth from the mountain which was on fire, how beautiful the illustration.
जब मूसा पहाड़ से नीचे उतरा जिस पर आग लगी हुई थी तो वो मंजर कितना खूबसूरत था।
Moses had went down to Egypt and told the church fathers that the Lord God had to visit him in the name of I am.
मूसा मिस्र में गया और कलीसिया के बुजुर्गों को बताया कि खुदावन खुदा उसके पास मैं हूँ के नाम से आया था।
That name is present tense. Not I was, will be, but I am ever the same yesterday, today, and forever. He is present tense.
वो नाम ज़माने हाल का है, ना के मैं था, ना के मैं हूँगा, लेकिन मैं हूँ हमेशा ही एक जैसा, कल, आज और अब तक यकसा। वो ज़माना हाल को जाहिर करता है।
He that compares with Hebrews 13:8, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever.
वो जो के मुवाजना करता है अब्रानियों 13:8 के साथ, यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है।
It's still the prophesied word in the congregation that was to dovetail with that word, the experience of this day. The reformers had it. Oh, but this is another day. See what day we're living in.
ये अभी तक नबुवत का कलाम है और वो जमात जिसे इस दिन के तजर्बे को उस कलाम के साथ मिलाना था जो असलाकारों के पास था, हो, लेकिन ये एक दूसरा दिन है, देखें, जिस दिन में हम रह रहे हैं।
Just as he couldn't come in the days as he came on earth in the way that Moses came or any of the prophets came, it wasn't prophesied.
जैसे कि वो इन दिनों में नहीं आ सकता था, बल्कि उन दिनों में उसे जमीन पर आना था, जब वो जमीन पर आया था, उन दिनों में, उस तरह जैसे मूसा आया या कोई और नबियों में से आया, क्या इसकी नबुवत नहीं की गई थी?
And in this last days it's prophesied to come this way. It can't come in the form of Luther's revival. It can't come in the form of Wesley revival. It's a restoration. Now it's a time that it must come back to the original sunlight. The original.
और इन आखिरी अयाम में ये नबुवत की गई कि इस तरह से आना है। ये लूथर की बेदारी की शक्ल में नहीं आ सकता था, ये वेस्ली की बेदारी की शक्ल में नहीं आ सकता था। ये बहाली का वक्त है, यही वक्त है कि जरूर वापिस बेटे की असल रोशनी की तरफ, बिल्कुल असल रोशनी की तरफ आया जाए।
Oh, how we could lay the scriptures in on that, and you theologians, what part of the world you're from, you know that that's true, it's a promise.
Oh, उस कलाम में हम कैसे कुछ शामिल कर सकते हैं, और आप इल्मे इलायात के लोग, आप दुनिया के किसी हिस्से से भी हों, आपको मालूम है कि ये सच है, ये वादा है।
That's what makes the people so odd. That's what makes the oddballs that you call them.
यही है जो लोगों को मुख्तलिफ बनाता है, यही है जो मुख्तलिफ किस्म की चीज बनाता है जिनको आप पुकारते हैं। यही वजह है कि रसूमात से पर्दा हटा दिया गया है और वो इसे देखते हैं, वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, समझे?
It's the promise of God, and we cannot go against that because the scriptures cannot be broken.
यही खुदा का वादा है और हम इसके बरखिलाफ नहीं चल सकते, इसलिए कि कलाम की आयात को तब्दील नहीं किया जा सकता।
Yes, we find that he promised that he had emptied himself into his people, and he's the same yesterday, today, and forever.
जी हाँ, हमें पता है, उसने इसका वादा किया था। उसने खुद को अपने लोगों के अंदर खाली कर दिया, क्योंकि वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है।
Moses, after he went down into Egypt and declared this, then the Father vindicated his message by coming on Mount Sinai in the same pillar of fire and set the mountain on fire.
मूसा के मिस्र में जाने के बाद ये ऐलान कर दिया गया और बाप ने अपने पैगाम को कोए सीना पर उतरने से और बिल्कुल उस आग के सतून में होकर और पहाड़ पर आग लगाकर साबित कर दिया।
Did we notice the one he gave the promise to, he brought him forth with the word.
क्या हमने गौर किया? वो शख्स जिसने वादा किया था, वो अपने कलाम के साथ जाहिर हुआ।
He had the commandments, and to have this commandment, he had the commandments was the word.
उसके पास हकामात थे और वो ये हकामात लेकर आया, वो हकामात कलाम था।
The word had never come to the people yet, so the word always comes to the prophet, and he was the prophet for that hour.
वो कलाम लोगों के पास अभी तक कभी नहीं आया था, बस कलाम हमेशा ही नबी के पास आता है और वो उस जमाने का नबी था।
Like Jesus was the word, John was the prophet. And Jesus came to him in the water because the word always comes to the prophet without failure. The word comes to.
इसी तरह यीशु कलाम था, योहन्ना एक नबी था, और यीशु पानी में उसके पास आया, क्योंकि कलाम हमेशा ही बगैर किसी रकावट के नबी के पास आता है, समझे? कलाम उसके पास आया।
So Moses. The word came to him, the commandments, and he had them.
बस कलाम मूसा के पास हकामात की सूरत में आया और उसने उनको ले लिया।
Now, while before the word was giving out and made manifest, Moses had to veil his face. For the word wasn't completely made manifest.
अब क्यों? इससे कबल के कलाम जाहिर होता और सौंपा जाता, मूसा ने अपने चेहरे को छुपाना था उस कलाम की खातिर जो मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं हुआ था।
They know something had happened, but they didn't know what it was. The roaring and thundering. They said, "Let Moses speak and not God."
वो जानते थे कि कुछ हुआ था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि बिजली का गरजना और चमकना क्या था। तब उन्होंने कहा, "मूसा बात करे, ना कि खुदा हमसे बात करे."
And God said, "Well, I will do that. From this forth, I'll not appear like this no more. I'll send him a prophet. So I speak through my prophet."
और खुदा ने फरमाया, आइंदा से मैं ठीक यही करूंगा, मजीद मैं इस तरह दिखाई ना दूंगा, मैं उनके पास एक नबी भेजूंगा, लिहाजा वो ऐसा ही करेगा, मैं अपने नबी के वसीला से कलाम करूंगा।
Now if Moses with the natural law as Paul in 2 Corinthians sure has revealed to us had the veil of faith with the natural, how much more will the spiritual be glorious and veiled to the unbeliever before it's made manifest to him?
अब अगर मूसा फितरी कानून के साथ, जैसे कि पौलुस रसूल ने यहाँ दूसरे करंथियों में हमारे सामने जाहिर किया है, उसे अपना फितरती चेहरा छुपाना पड़ा था, तो रूहानी चेहरा कितना जलाली होगा जो गैर ईमानदारों से छुपाया गया है मगर उस पर जाहिर किया गया है।
How much more would they call if Moses was an oddball? How much more will they call you, who's broke through the veil, has went into the pillar of fire, has come out with the blessing?
कितना ज्यादा वो उसे कहते थे, मूसा एक अजीब शख्स है। कितना ज्यादा आपको कहेंगे, जिसने पर्दा चाक कर दिया है, आग के सतून के अंदर जा चुका है और बरकत के साथ वापिस बाहर आ चुका है।
And now you are veiled. The people can't see it. They can't understand it.
और अब आप पर्दा हैं। लोग इसे नहीं देख सकते, वो इसे नहीं समझ सकते।
If the natural be glorious, how much more will the supernatural?
अगर फितरती जलाली था तो माफूकुल फितरत कितना जलाली होगा।
If the natural which had an end to it was to be glorious, how much more this which has no end to it will be glorious?
अगर फितरती जिसका खात्मा हो गया था जलाली था तो कितना ज्यादा ये जलाली होगा जिसका खात्मा नहीं होगा।
But still it's veiled. It's veiled not to the believer but to the unbeliever. He cannot see it. God always veils himself from the unbeliever.
लेकिन अभी तक ये पर्दा में है। ये ईमानदार के लिए पर्दा में नहीं है बल्कि गैर ईमानदारों के लिए पर्दा में है। वो इसको देख नहीं सकते। खुदा ने हमेशा ही खुद को गैर ईमानदारों से पर्दा में रखा है।
Traditions hide it like they did then. They do it today.
रसूमात इसे छुपाती हैं। तब जैसे उन लोगों ने इसे छुपाया वैसे ही वो आज भी छुपाते हैं।
That was a spiritual veil that we have now. Where the natural veil was, they're vindicated by the prophet with the written word, a prophesier, one who comes with the written word to make it plain. Amen. They know the word was there, but they didn't know what it meant, and Moses made it plain.
ये रूहानी पर्दा है जो अब हमारे पास है। वहाँ फितरी पर्दा था जहाँ वो लिखे हुए कलाम से नबी के जरिए साबित होते। एक नबुवत करने वाला लिखे हुए कलाम के साथ आता और उसे उनके लिए आसान बना देता। उन्हें मालूम था कि कलाम वहाँ था लेकिन उन्हें इसका मतलब मालूम ना था और मूसा ने उसे उन लोगों के लिए आसान बना दिया।
He said, the commandment says this, and this is why. He made it plain. And before it was made plain, it was veiled.
उसने कहा, हैकामात ये फरमाते हैं और ये ऐसा क्यों है? उसने उसे आसान कर दिया। इससे कबल के इसे आसान या सादा बनाया जाता, ये पर्दा में था।
And so is it today. Veiled to the people until it's revealed and made plain to the people. God, the mighty God, veiled in human flesh, the Word. Notice, now we find out that it was hid to the unbeliever, but revealed to the believer. Notice, Moses had to enter this pillar of fire alone. No one could go with him.
और बस आज भी ऐसा ही है। ये लोगों के सामने पर्दे में है जब तक ये लोगों के सामने जाहिर ना हो जाए और लोगों के लिए आसान और सादा ना बनाया जाए। खुदा कादरे मुतली खुदा यानी कलाम इंसानी बदन के पर्दे में था। गौर कीजिए, अब हम जानते हैं कि वो गैर ईमानदारों के वास्ते छुपा हुआ था लेकिन ईमानदारों पर उसने अपने आप को जाहिर कर दिया था। गौर कीजिए, तन्हा मूसा ही उस आग के सतून में दाखिल हुआ। कोई भी शख्स उसके साथ नहीं जा सकता था।
It was not, what does that speak to us? That you don't come into this by joining a Pentecostal group.
ऐसा नहीं था। वो हमसे क्या बोलता है कि तुम पेंटिकोस्ट के ग्रो में शामिल होकर अंदर नहीं आ सकते।
See, he never revealed it to a group. He revealed it to an individual. And that's the way it is.
देखें, उसने कभी भी ये एक ग्रोह पर जाहिर नहीं किया। उसने इसे फर्दे वाहिद पर जाहिर किया और यही तरीका आज भी है।
He said, I belong to a church. I belong to this, but that won't work. See?
आप कहते हैं, मेरा तल्लुक एक कलीसिया से है। मैं इससे तल्लुक रखता हूँ लेकिन ये काम नहीं करेगी, समझे?
And for anyone to try to follow Moses to impersonate it was death. And so is it today, spiritual death to try to impersonate.
और अगर कोई भी मूसा की नकल करके उसके पीछे चलने की कोशिश करता तो उसे मौत का सामना करना पड़ता। इसी तरह आज ये रूहानी मौत है यानी नकल करने की कोशिश करना।
That's what's the night we're getting into. There's raising up amongst the groups carnal comparisons. Somebody try to act like it and live a different life.
यही वो है। आज रात हम ऐसी जगह हैं, ऐसे ग्रोह के अंदर जिनके दरमियान नफसानी मुशाबत रखने वाले लोग बरपा हो रहे हैं। कोई शख्स उसकी मानिद काम करने की कोशिश करता है और मुख्तलिफ जिंदगी गुजारता है।
Can drink, can smoke. Women can live any most any way they want to. And like the world and stay home and watch television and the things of the world and still call themselves Pentecostals.
और वो शराब पी सकता है, सिगरेट पी सकता है, औरतें कोई भी जिंदगी गुजार सकती हैं, ज्यादातर जो वो चाहती हैं, किसी भी तरीके से दुनिया को पसंद करते हुए और घर पर ठहरकर टीवी देखते हुए और उन दुनियावी चीजों में पड़ी रहती हैं और फिर भी अपने आप को पेंटिकास्टल कहती हैं।
They are trying to impersonate a genuine, it's never been revealed to them yet.
वो एक असल की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अब तक उन पर कभी भी जाहिर नहीं किया गया।
When it is revealed, it's glorious, and something takes that out of you when you walk in there. You become a veil.
जब ये जलाली जाहिर हो जाता है और आप इसमें चलते फिरते हैं, तो फिर कोई चीज जो आपके अंदर होती है निकल जाती है, फिर आप एक पर्दा बन जाते हैं।
It just won't work. And to impersonate it was death.
इसकी नकल करना मौत थी, ये काम नहीं करेगी।
Moses veiled, he was the living word to the people. And today, the people that are veiled are the same thing. They are written epistles. Amen. Read of all men. Not a new epistle, but the epistle that's been written, made manifest.
मूसा पर्दा था, वो लोगों के लिए जिंदा कलाम था, और आज जो लोग पर्दा में हैं, वो बिल्कुल यही चीज हैं, वो लिखे गए खतूत हैं, जिन्हें तमाम आदमी पढ़ते हैं, एक नया खत नहीं, लेकिन वो खत जो लिखकर जाहिर कर दिया गया है।
It's those who believe the word and the promise of this day that God is pouring out His Spirit upon all flesh, and that is written epistles.
यही वो हैं जो कलाम का और इस दिन के वादे का यकीन करते हैं कि खुदा अपने रूह में से तमाम लोगों पर अंडेल रहा है, और यही लिखे गए खतूत हैं।
And when a person tries to carnally impersonate that, it backfires. Your life shows what you are.
और जब कोई शख्स जिस्मानी तौर पर इसकी नकल करने की कोशिश करता है, तो ये गुमराह हो जाता है। आपकी जिंदगी जाहिर कर देती है कि आप क्या हैं।
One time there was a boy. He'd gotten some trouble. He was a good boy, but he went to court, and the judge said, "I find you guilty." I must punish you to life in prison.
एक मर्तबा एक लड़का था, वो किसी मुसीबत में फंस गया था। वो एक अच्छा लड़का था, लेकिन वो अदालत में चला गया और जज ने कहा, मैं तुम्हें मुजरम पाता हूँ, मैं तुम्हें उम्र की कैद देता हूँ।
He said, I want to try my own case. He said, I want to go in upon my record. He said, you have no record. Your record is what's condemned you.
लड़के ने कहा, मैं अपना मुकदमा खुद हल करने की कोशिश करता हूँ। लड़के ने कहा, मैं अपने तहरीरी कागजात चाहता हूँ। जज ने कहा, तुम्हारे पास कोई भी तहरीरी सबूत नहीं है, तुम्हारे पास जो तहरीरी कागजात हैं, वही तुमको मुजरम साबित करते हैं।
And that's the way it is today. The reason the church is not advanced like it should, it's the record, it's the lie.
और आज भी यही तरीकेकार है। सबब यह है कि कलीसिया इतनी मुखलिस नहीं है जिस तरह से उसे होना चाहिए, यही सबूत है, ये झूठी है।
We must become more dedicated. We must believe every word of God. We must seek until that word is made real to us. See, the record is what keeps us from entering in.
हमें ज्यादा मुखलिस होने की जरूरत है। जरूरी है कि हम खुदा के कलाम के हर लफ्ज पर यकीन करें। जरूरी है कि हम तलाश जारी रखें जब तक कलाम का हर एक लफ्ज हमारे लिए हकीकी ना बन जाए। समझे सबूत यही है जो हमें अंदर जाने से रोकता है।
But one time they let you get out of this loop in this same court. The boy had no money. He could not pay it off. The fine was way in the thousands of dollars. But he had a big brother that came and paid it off for him.
मगर एक मर्तबा आपको इस फंदे से निकलने का मौका मिलता है। बिल्कुल उसी अदालत में उस लड़के के पास देने के लिए पैसे नहीं थे, वो उसकी अदायगी नहीं कर सकता था। जुर्माना $1,000 में था, लेकिन उसका एक बड़ा भाई था जो आया और उसने उसके लिए अदायगी की।
Now, we've got a big brother, Jesus, the Son of God, and he come to pay it off for us if we'll just believe it and be able to enter into the veil with him. Right? He is our Moses. Jesus is our Moses of today.
अब हमें एक बड़ा भाई यीशु मिल गया है, यानी खुदा का बेटा, और वो हमारी अदायगी करने को आया। अगर हम सिर्फ ये यकीन कर लें और फिर हम उसके साथ पर्दे के अंदर दाखिल होने के काबिल हो जाएंगे, जैसे कि वो हमारा मूसा है, यीशु हमारा आज का मूसा है।
Moses' veil was a living word to the people. Today, Jesus' veil is the living word to the people that Jesus in the church.
मूसा पर्दा था और उस पर्दे के अंदर लोगों के लिए जिंदा कलाम था। आज यीशु पर्दे में रहकर लोगों के सामने जिंदा कलाम है, जैसा कि यीशु कलीसिया के अंदर मौजूद है।
The Holy Ghost, the Son of God, in the people revealing the word by the promise of this day. Makes it just exactly. Same now.
पाकरू, खुदा का बेटा, लोगों में रहकर इस जमाने के वादे के कलाम को बयान कर रहा है और इसे बिल्कुल हू बहू पेश कर रहा है। वो अब भी यकसा है।
And remember, Moses did this and manifested this not to all the world, but to the Exodus people. Just one class of people. That was those who come out of the Exodus.
और याद रखें, मूसा ने ऐसा ही किया और इसे जाहिर किया, ना के सारी दुनिया पर, लेकिन खुरूज करने वाले लोगों के सामने, सिर्फ एक ही जमात के लोग। ये वो थे जो खुरूज में बाहर आए थे, खुरूज में।
And today the Holy Spirit, in the face of people who says divine healing is not right.
और आज रूल कुछ उन लोगों के सामने है जो कहते हैं इलाही शिफा ठीक नहीं है।
One of us consulting a doctor called me the other day, a little lady. Or there's been 4 or 5 cases there of laying just at the point of death, giving hours, and the Holy Spirit healed him.
जब मैं बातचीत कर रहा था किसी दिन, जब डॉक्टर ने मुझे एक औरत के लिए बुलाया, हो अरे वहाँ तो 4 या 5 बीमार मरीज पड़े हुए थे जिन्हें कुछ ही घंटे दिए गए थे, जो के करीबुल मौत थे। रूल कुछ ने उन्हें शिफा बख्शी।
The doctor was questioning. He said, "How can this be?" Well, I said, that's my patient. I said, it was, but now it was God's. It's his subject now. See?
डॉक्टर इस पर सवाल कर रहा था। डॉक्टर ने कहा, ये कैसे हो सकता है, क्यों? उसने कहा, मैं, जबकि वो मेरे मरीज हैं। मैंने कहा, ये थे, लेकिन अब ये खुदा के हैं, और अब ये उसके लोग हैं, समझे?
And so you see the thing it is that God is calling an exodus to come from behind the fleshly curtain who tries to impersonate, who tries to join church. Not Methodist, Baptist, Presbyterian all together, but Pentecostal churches.
और बस आप देखते हैं कि यही चीज है कि खुदा एक खुरूज को बुला रहा है कि जिस्मानी पर्दा के पीछे से बाहर आए, जो हकीकी रूप लेने की कोशिश करे, जो कलीसिया में शामिल होने की कोशिश करे, ना के उन सब में शामिल होने की कोशिश करे, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेसबिटेरियन और तमाम पेंटिकॉस्टल कलीसियाएं।
It is an individual affair. It's you and God. You have to go in, not your group, not your church, not your pastor, but it's you has to go in.
ये एक इंफ्रादी मामला है। ये आप और खुदा का मामला है। आपको अंदर दाखिल होना है, ना के आपकी कलीसिया को, ना आपके ग्रो को, ना के आपके पासबान को, लेकिन ये आप ही हैं जिसे अंदर जाना है।
I want you to notice another characteristic of Moses. When he come out, yet being a prophet, being a great man that he was, when he come out with the word, the people saw that he was changed. Something had happened to him.
मैं चाहता हूं कि आप मूसा की दूसरी खूबी पर गौर करें। जब वो बाहर आया, तब एक नबी होते हुए, एक अजीम इंसान होते हुए, जो के वो था, जब वो कलाम के साथ बाहर आया, लोगों ने देखा कि वो तब्दील हो चुका था, उसके साथ कुछ हुआ था।
When he come out with the vindicated word of that hour, the commandments, he was a changed person.
जब उस वक्त के तस्दीक शुदा कलाम के हकामात के साथ बाहर आया, तो वो एक तब्दील शुदा शख्स था।
And so will you be. When you come from behind that human veil that would laugh at a meeting like this, that man who would stumble at divine healing and say the days of miracles is past.
और क्या आप ऐसे होंगे जब आप उस इंसानी पर्दे के पीछे से बाहर आ जाते हैं जो कि इस तरह की इबादत पर हंसते हैं, वो शख्स जिसे इलाही शिफा पर ठोकर लगती है और कहता है कि मौजजात के दिन तो गुजर चुके हैं।
You drop from behind that human veil there, the traditional veil, and everybody will know something happened to you.
आपने वहाँ पीछे ही इंसानी पर्दा, रस्मी पर्दा गिरा दिया है और हर कोई जानेगा कि आपके साथ कुछ हुआ है।
Like our honorable brother Jim Brown, imagine most Presbyterians are knows that something happened to him because he come from behind a traditional veil.
जिस तरह हमारे मोहतरम भाई जिम ब्राउन, मैं ख्याल करता हूँ कि बहुत सारे प्रेस्बिटेरियन जानते हैं कि उसे कुछ हुआ था क्योंकि वो रस्मी पर्दे के पीछे से आया था।
He saw something in the people that attracted him, and he came out from behind the veil.
उसने लोगों में कुछ देखा जिसका वो कायल हो गया और वो पर्दे के पीछे से बाहर आ गया।
But when he come out from behind the veil, you'll be in full view of the people then if they can see that something has happened to you.
ठीक है, आप जब आप पर्दे के पीछे से बाहर आ जाते हैं तब आप पूरी तरह से लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे, वो देख सकते हैं कि आपके साथ कुछ हुआ है।
The veil word to the unbeliever, but in full view of the believer, Jesus Christ the same yesterday, today and forever.
गैर ईमानदार के लिए कलाम पर्दे में है, लेकिन ईमानदारों के लिए पूरी तरह आया है। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है।
Then it was God. In them days it was God in a man, his son, Jesus Christ. We believe that.
तो ये खुदा ही था। उन दिनों में ये खुदा ही इंसान के अंदर था जो अपने बेटे यीशु मसीह में था। हम ये ईमान रखते हैं।
Not just a prophet, not just an ordinary man, ordinary human.
ना के एक नबी और ना के एक मामूली सा आदमी, ना ही एक आम इंसान था।
It was God in Christ, God in a man, the fullness of the Godhead bodily in a man. God in a man, now it's God in man. The fullness of God in the Godhead bodily in his entire church. Manifesting himself, fulfilling his word.
ये मसीह में खुदा था, खुदा इंसान में था, अलुहियत की सारी मामूरी मुकम्मल तौर पर इंसान में मौजूद थी। अब यही खुदा इंसानों में है, खुदा की सारी अलुहियत की मामूरी मुकम्मल तौर पर उसकी सारी कलीसिया के अंदर खुद को जाहिर करते हुए अपने कलाम को पूरा करते हुए मौजूद है।
Now we find God all ages has had skin on him. God has been hid behind a veil.
अब हम जानते हैं तमाम जमानों में खुदा ने अपने ऊपर खाल चढ़ाई रखी, वही खुदा पर्दे के पीछे छुपा हुआ था।
It just reminds me of a little story that happened down in the south. And so there's a Christian home.
ये मुझे याद दिलाता है एक कहानी के मुतालिक जो जनूब में वाकया हुई थी, और लिहाजा वहाँ एक मसीही घराना था।
And in this Christian home, they believed God and they thought that God protected him from all troubles, in which he does.
और फिर उस मसीही घराने में खुदा पर ईमान रखने वाले लोग थे और वो सोचते थे कि खुदा उनको तमाम मुसीबतों से बचाता है, और जैसे कि वो बचाता भी है।
And they had a little junior, a little boy about 7 or 8 years old, and he went to Sunday school and was a very fine little lad, but he was scared in a storm, especially when lightning was flashing.
और उनके पास एक छोटा लड़का था तकरीबन 7 या 8 साल का, और वो संडे स्कूल जाता, और वो बहुत ही अच्छा छोटा लड़का था, लेकिन वो आंधी से बहुत डरता था, खास तौर पर जब बिजली चमक रही होती थी।
And I told this to a man the other day when this piece had come out about this man being healed, the same minister said, they make a god out of you, Brother Branham.
मैंने ये कहानी एक शख्स को बताई थी, और दूसरे ही दिन उस शख्स के शिफायाब हो जाने के बारे में ये मजमून का हिस्सा बाहर आया। तो किसी खादम ने कहा, भाई ब्रैनम, वो लोग आपको खुदा बनाते हैं।
Well, he was a critic, so I thought I'd just kind of break it off just a little bit, not to hurt, you know, but just kind of...
ठीक है, वो तनकीद करने वाला था, पर मैंने सोचा मैं थोड़ा सा नरमी से इसके साथ बात करूंगा ताकि इसे तकलीफ ना पहुंचे। आपको मालूम है, सिर्फ थोड़ा सा नरमी से।
I said, is that too far from the scripture? To be that? See? I said, no, it isn't. I said, because Jesus called prophets gods. That's right. God...
मैंने कहा, क्या इस तरह से होना कलाम से दूर है? समझे? मैंने कहा, नहीं, ये ऐसा नहीं है। मैंने कहा, यीशु ने नबियों को खुदा कहा, समझे? ये दुरुस्त है, खुदा।
And they say, well, you people try to take the place of God. That's not too far out. That's exactly what it is. It's exactly God manifested in flesh, just as he promised.
और वो कहते हैं, ठीक है, आप लोग खुदा की जगह लेने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ज्यादा पहुंच से दूर नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा है। ये बिल्कुल वही है, खुदा जिस्म में जाहिर हुआ जिस तरह उसने वादा किया था।
This little family, we find, I told him this little story which come to my mind just now, that one night it come up a storm and mother said to Junior, said, now you go on upstairs, son, and go to bed. He said, Mom, I'm scared. And he said, ain't nothing gonna hurt you. Go on up and go to bed.
ये छोटा खानदान जिसमें हम पाते हैं, मैंने उसको ये कहानी सुनाई जो कि मेरे दिमाग में अभी आई है, कि एक रात आंधी आ गई और माँ ने छोटे से कहा, अब तुम ऊपर जाओ बेटा और सो जाओ। उसने कहा, माँ, मैं खौफजदा हूँ। उसने कहा, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा, ऊपर जाओ और सो जाओ।
Little Junior laid up there and the lightning flashing around the windows and the little fella got so nervous he sticking his head under the cover and he could still hear the lightning, or see the lightning flash on the windows and hear the thunder roar.
वो छोटा लड़का ऊपर जाकर लेट गया और बिजली खिड़कियों के अतराफ चमकने लगी और वो छोटा बच्चा बहुत डर गया और उसने अपना चेहरा चादर के नीचे छुपा लिया, लेकिन वो अब भी आवाज सुन सकता था। वो बिजली या चमकने को खिड़कियों से देख सकता था और गर्ज की आवाज को सुन सकता था।
So he said, Mama. And she said, what do you want, Junior? He said, come up here and sleep with me.
बस उसने कहा, माँ, और उसकी माँ ने कहा, छोटू, तुम क्या चाहते हो? छोटू ने कहा, यहाँ ऊपर आ जाओ और मेरे साथ सो जाओ।
So she come up the steps like any good loyal mother would, and she came up and she tucked little Junior in her arms and she said, Junior, mother wishes to speak to you just a moment. I said, all right, Mama.
बस वो सीढ़ियों से ऊपर गई जैसे कि एक अच्छी वफादार माँ करेगी, और वो ऊपर गई और उसने छोटू को अपनी बाहों में ले लिया और उसने कहा, छोटू, माँ तुमसे एक लम्हा के लिए कोई बात करना चाहती है। उसने कहा, ठीक है माँ।
So now you must bear this in mind. We go to church constantly. We read the Bible. We pray. We are a Christian family. We believe in God.
माँ ने कहा, अब तुम जरूर ये बात अपने जहन में रख लो, हम गिरजाघर मतवातर जाते हैं, हम कलाम पढ़ते हैं, हम दुआ करते हैं, हम एक मसीही खानदान है, हम खुदा पर ईमान रखते हैं।
And so we believe that in storms and whatever goes on, God is our protection.
और उसने कहा, हम ये यकीन रखते हैं कि आंधी या जो कुछ भी हो, खुदा हमारी पनाह है।
He said, Mama, I believe every bit of that. But say, when that lightning's so close, he said, I want a guy with skin on it.
उसने कहा, माँ, मैं इसमें से हर एक बात पर यकीन करता हूँ, लेकिन उसने कहा, जब वो चमक बहुत ज्यादा करीब होती है, उसने कहा, मैं खुदा को उसकी खाल के साथ चाहता हूँ जो उसके ऊपर हो।
So, I think not only Junior, but all of us feel that way. When we get together, when we pray one for the other, God, with skin on it.
बस मेरे ख्याल में ना कि सिर्फ वो छोटा बच्चा बल्कि हम सब भी ऐसा ही महसूस करते हैं जब हम इकट्ठे होते हैं, जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, तो खुदा हमारी खाल के साथ मौजूद होता है। हमें यहाँ मालूम होता है कि खुदा ने हमेशा ही अपने ऊपर खाल रखी है। जब मूसा ने उसको देखा तो उसने अपने ऊपर खाल पहन रखी थी ताकि एक आदमी की मानिंद नजर आए।
When God was behind the curtains, he had skin on him. And God tonight in his church is veiled in his church with skin on it. He's still the same God tonight. We find that.
जब खुदा पर्दे के पीछे था तो उसने अपने ऊपर खाल पहन रखी थी, और खुदा आज रात अपनी कलीसिया में खाल के पर्दे में होकर अपनी कलीसिया में मौजूद है। अब भी आज रात वो यकसा खुदा है, हम ऐसा ही पाते हैं।
But now as ever, the skin veil is what catches the traditions. They just can't believe it. That's God making them people act like that.
लेकिन अब भी हमेशा की तरह खाल का पर्दा जो रसूमात को जकड़े हुए है, वो यकीन नहीं रखते कि यही खुदा उन्हें कायल कर रहा है कि ये लोग इस तरह अमल करें।
See, it's because God's veiled in his church in skin on. That's right.
देखें, ये है क्योंकि खुदा ने अपनी कलीसिया की खाल में अपना चेहरा छुपाया हुआ है, उस पर खाल है, ये दुरुस्त है।
He's hid from the unbeliever and revealed to the believer. Yes, sir.
वो गैर ईमानदारों से छुपा हुआ है और ईमानदारों के सामने आया है। जी जनाब।
Now, when the tradition veil of traditions of the elders and the word is broke through, oh, of course today then comes in plain view. We see him, deity again veiled in human flesh.
अब जबकि उनका रस्मी पर्दा बुजुर्गों की रसूमात का, जिसको कलाम ही ने तोड़ा है, हो बेशक आज फिर वो एक वाज़े सूरत में दिखाई देता है। हमने उसे देखा, खुदा दोबारा इंसानी जिस्म के पर्दा में है।
Hebrews 1 said so, and also Genesis 18. You remember God was a man standing there eating and talking with Abraham and told what Sarah was doing in the tent behind it.
अब्रानियों 1 में इसी तरह कहा गया है। इसी तरह पदेश 18 को देखें, याद रखें, खुदा वहां खड़ा होने वाला इंसान और खाने वाला और इब्राहिम से बातें करने वाला था, और बता दिया गया कि सारा वहां अंदर खैमे में क्या कर रही थी।
And Jesus said, as it was in the days of Sodom, so shall it be at the coming of the Son of Man. Deity veiled again in human flesh.
और यीशु ने फरमाया, जिस तरह ये सदूम के दिनों में हुआ था, वैसा ही इब्ने आदम की आमद पर भी होगा। अलुयत दोबारा इंसानी जिस्म के पर्दा में होगी।
I remember Jesus didn't say when the Son of God is being revealed. In Luke, the 17th chapter, I believe, and about the 21st verse, somewhere along there, he said, and when the Son of Man is being revealed.
यीशु ने ये नहीं कहा, जब खुदा का बेटा जाहिर होगा, लेकिन लूका 17 बाब में, मैं यकीन रखता हूँ, 20 और 21 आयत के बारे में यही कहीं, इसी के साथ उसने कहा, जब इब्ने आदम जाहिर होगा।
The Son of Man back in the church again, revealed in human beings. Not Son of God, but the Son of Man again, back in his church again, in the last days. We find that he promised that in God's promises.
इब्ने आदम वापिस कलीसिया में दोबारा आता है और बनी नौ इंसान में जाहिर होता है, ना कि इब्ने खुदा, लेकिन दोबारा इब्ने आदम बनकर आखिरी दिनों में अपनी कलीसिया में वापिस आता है। हम जानते हैं कि उसने खुदा के वादों में से ये एक वादा किया था।
We notice another thing in the Old Testament. I have a scripture here in Exodus that the old badger skins, what did it do? It hid the glory of God from the people. The badger skins.
पुराने अहदनामे में हम एक दूसरी चीज पर गौर करते हैं। मेरे पास खरूज में यहाँ एक ऐत है कि पुरानी तुक्स की खाल, उस खाल ने क्या किया? उसने खुदा के जलाल को लोगों से छुपा दिया, पुरानी तुक्स की खाल ने।
The people couldn't see it because it was a skin that held it. The skin was, the glory of God was behind the skin.
हालांकि लोग उसे देख भी नहीं सके, क्योंकि ये ऐसी खाल थी जो उसे रोके हुए थी। वो ऐसी खाल थी जिसमें खुदा का जलाल खाल के पीछे था।
And now the glory of God is behind your skin. That's right. And the traditions don't see it. It's inside the veil where his word was.
और अब भी खुदा का जलाल आपकी खाल के पीछे है, ये दुरुस्त है, और रसूमात इसे देख नहीं सकती। ये पर्दे के अंदर है जहाँ उसका कलाम था।
What was on the inside of that skin back there, the old badger skins?
उस पुरानी तुक्स की खाल, उस खाल के अंदर जो पीछे थी, क्या था?
Which there was no beauty we should desire. And when it was made flesh and dwelt among us, it was still no beauty we should desire.
उसमें कोई खूबसूरती ना थी जिसकी हम तमन्ना करते, और जब ये बदन बना और हमारे दरमियान रहा तब भी कोई खूबसूरती ना थी कि हम उसकी तमन्ना करते।
And now the same thing is today. There's nothing in a man or a woman that can be desired. But what's in behind there? That's what it is.
और अब आज भी वही बात है, एक मर्द या औरत में कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी हम तमन्ना करें, लेकिन ये क्या है जो उसके पीछे है, यही कुछ तो है।
Well, you say that fellow I know he used to be a drunkard, he used to do this. I don't care what he used to do. What's hid behind that skin? What is behind there? That's what counts.
ठीक है, आप कहते हैं वो साथी, मैं जानता हूँ वो शराबी था, वो ऐसा करने का आदी था, मुझे इसकी परवाह नहीं वो क्या करने का आदी था, उस खाल के पीछे क्या छुपा हुआ है, उसके पीछे क्या है, यही तो है जो शमार किया जाता है।
That's what the people is blinded. The skin blinds the people.
यही है जिसने लोगों को अंधा किया हुआ है, खाल ने लोगों को अंधा कर दिया है। देखें, वो कहते हैं मुझे याद है जब वो औरत ऐसा किया करती थी, मैं जानता हूँ वो क्या करती थी, लेकिन अब उसके बारे में क्या ख्याल है।
But there is housing the glory of God.
देखें वो खालें जो के कभी तुक्स पर होती थीं, लेकिन अब ये खुदा के जलाल को छुपा रही हैं। इसे लेकर उसने इसके पीछे मस्कन बना लिया है। ये एक जानवर पर थी, मगर अब ये खुदा के जलाल पर बसेरा किए हुए है।
And so can your skin be changed tonight to be made a housing place for God, God dwelling in humanity.
और आज रात इसी तरह आपकी खाल भी बदली जा सकती है, खुदा के लिए एक मस्कन बनाया जा सकता है, खुदा बनी नो इंसान में रहता है।
Not the old badger skins. We find out behind it was inside of there was the word, and the word there also was the shoe bread.
देखें, पुरानी तुक्स की खाल, हमें पता है उसके पीछे अंदर कलाम था, और वो कलाम और इसी तरह नजर की रोटी भी थी।
The ark was sprinkled, and what was it? The Shekinah glory was in there.
अहद के संदूक पर खून का छिड़काव किया जाता था, और ये क्या था? ये खुदा का शाहाना जलाल था।
Now the word is a seed, and it cannot bring forth until the sun strikes it. The sun's got to be up on the seed to make it bear, to make it come forth.
अब कलाम बीज है, और ये फलदार नहीं हो सकता जब तक वो बेटा इसमें शरीक नहीं हो जाता। बेटे के पास बीज है कि उसे उगाए ताकि ये बारवर हो।
And that's the only way you take the word. See, take the word of God in your heart and walk into the Shekinah glory.
और सिर्फ यही तरीका है, आप कलाम को लें, समझे, और खुदा का कलाम अपने दिलों में लें और शाहाना जलाल में चलें।
And when you do, it'll bring shoe bread, manna, that's only given for a separated people. The only thing that can eat it, is permitted to eat it, is just the people who are permitted. It knows it.
और जब आप ऐसा करते हैं, तो ये नजर की रोटी है, ये मन है, जो कि सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए है। सिर्फ यही खा सकते हैं, इन्हीं को खाने की इजाजत है। सिर्फ वो लोग जिनको इजाजत दी गई है, इसे जानते हैं।
Paul said you're changing from glory to glory. You see, finally it comes to its back to its original glory.
पालूस ने कहा, जलाल से जलाल में बदलते रहें। आप देखें, आखिरकार इसमें तब्दीली आती रहती है, जब तक ये वापस अपनी असल हालत में नहीं पहुंचता।
This is like a seed of a morning glory, the seed of a flower. It falls into the ground. A seed of corn falls in the ground.
ये गेंदे के बीज की मानिंद है, एक फूल का बीज ये जमीन पर गिरता है, मकई का बीज जमीन पर गिरता है।
What's the first thing? It comes up and it's a little sprout. Then it goes to a tassel. Then from a tassel back to its original grain.
पहली चीज क्या है? ये उगता है और ये एक छोटा सा पौधा बनता है, फिर ये फूल बन जाता है, फिर फूल से वापिस अपनी असल हालत बीज में।
Well, that's exactly what the church has done. It come from Luther, Wesley, and now back to the original grain, back to its original glory, back to the glory it was at the beginning.
ठीक, बिल्कुल यही है जो के कलीसिया ने किया है। ये लूथर वेस्ली से होकर अब वापिस असल बीज की तरफ आ रही है, वापिस अपने असल जलाल में, वापिस उसी जलाल में जो इब्तदा में था।
The sun that rose in the east is the same sun that's manifesting the same thing in the west, changing from glory to glory.
वो बेटा जो मशरिक से नमूदार हुआ, बिल्कुल वही बेटा, बिल्कुल इसी बात को मगरिब में भी जाहिर कर रहा है, जलाल से जलाल में तब्दील हो रहा है।
It changed from the pagan down into Luther, and from Luther down into Wesley, and from Wesley out into Pentecost, and on, changing from glory to glory, producing the hidden manna.
ये गैर कौम से तब्दील हुआ लूथर की तरफ, और लूथर से वेस्ली की तरफ, और वेस्ली से निकलकर पेंतिकोस्ट के अंदर, और फिर सिलसिला बा सिलसिला जलाल से जलाल में तब्दील होते हुए पोशीदा मन को पेश कर रहा है।
And now it's right to bring him back exactly like he was at the beginning. The same ministry, the same Jesus, the same power, the same Holy Ghost.
अब ये तैयार है, पक चुका है, इसको वापिस बिल्कुल वही लाया जाए जैसा के इब्तदा में था, उसकी वही खिदमत, वही यसु, वही ताकत, वही पाकरू।
The same one that come down on the day of Pentecost is the same Holy Ghost that's manifested today from glory to glory to glory.
बिल्कुल वही जो पेंतिकोस के दिन पर उतरा, बिल्कुल वही पाकरू जो आज के दिन जाहिर हुआ है, जलाल में से जलाल और जलाल तक।
Back to its original seat with the baptism of the Holy Ghost with the same signs, same wonders, same baptism, same kind of people acting the same way with the same power, the same sensation. It's from glory unto glory.
और वापिस अपने असल बीज की जानिब रूल कुछ के बपतुस्मा के साथ वापिस आता है, उन्हीं निशानों के साथ, उन्हीं अजीब कामों के साथ, उसी बपतुस्मे के साथ, एक ही किस्म के लोग एक ही तरीके से अमल करते हुए, एक जैसी ताकत के साथ, एक ही जज्बे से, ये जलाल में से जलाल तक।
And the next will be changed from this glory into a body like his own glorious body where we shall see him. Abraham saw the same.
और अगला जलाल इस जलाल से तब्दील शुदा जलाल होगा, एक बदन के अंदर जिस तरह उसका अपना जलाली बदन है, जहां हम उसे देखेंगे, इब्राहिम ने बिल्कुल यही देखा।
Now notice, we see how it was changed. Since Calvary, we are invited to share his glory.
अब गौर करें, हम देखते हैं कैसे ये तब्दील हो गया, जबकि कलवरी पर हमें उसके जलाल में हिस्सादार बनने की दावत दी गई।
Now in 1 Corinthians 12, we are baptized into his body. By one spirit, we are all baptized.
अब पहला करिंथियों 12 में हम उसके बदन में बपतिस्मा याफ्ता हुए, एक ही रूह में हम बपतिस्मा याफ्ता हुए।
Not by one water, one spirit, we're all baptized. That's right. Now, and then we become part of him.
ना कि एक पानी में, बल्कि एक रूह में हम सब बपतिस्मा याफ्ता हुए, ये दुरुस्त है, और तब फिर हम उसका हिस्सा बन जाते हैं।
I hope I'm not keeping you too long. See, I hope I'm not.
मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ज्यादा देर नहीं रोक रहा, समझे, मुझे उम्मीद है मैं ऐसा नहीं कर रहा।
But it's just like a great symphony that's playing out or acting out a drama.
लेकिन ये एक तरह के बहुत बड़े सुर के मिलाप की तरह बजाया जा रहा है, या एक ड्रामे में अदाकारी की तरह।
I don't know too much about symphonies or drama, but I was watching this play. I was talking about Carmen when my daughter and them was in it, and they were playing in this symphony in Carmen.
मैं सुर के मिलाप और ड्रामे के मुतालिक ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं ये खेल देख रहा था। मैं कारमेन के मुतालिक बात कर रहा था जब मेरी बेटी और दूसरे लोग इसमें थे, और वो उस सुर के मलाप को कारमेन वाले ड्रामे में बजा रहे थे।
There's acting out. The music was acting out the same thing.
वो अदाकारी कर रहे थे, वो मौसीकी जो बजाई जा रही थी उसी के मुताबिक अदाकारी कर रहे थे।
That's the way it is when you're baptized by the Holy Spirit into Christ.
यही एक तरीका है जब आप रूल कुछ के वसीला से मसीह के अंदर बपतिस्मा याफ्ता होते हैं।
Now see, many of you have read or heard the story of the great Russian composer who composed Peter and the Wolf, and how they act that out on symbols and everything.
अब देखें, आप में से बहुतों ने वो कहानी पढ़ी या सुनी होगी, उस अजीम रूसी मुसन्नफ की जिसने ये कहानी बनाम पीटर और बेड़िया तहरीर की, और कैसे उसने उन किरदारों को और अलामतों को हर चीज के ऊपर अदा करवाया।
And anyone who knows the story that's reading it off of a paper and can hear that symphony, how it's acting that out, the drama, playing it out.
और कोई भी शख्स जो ये कहानी जानता है, जो कागज से देखकर पढ़ी जाती है, तो वो उस सुर को सुन सकता है कि कैसे ये खेल किरदारों पर पेश किया गया और इसे बजाया गया।
Well, they know every change. They can look out here and see the change.
क्यों वो हर एक तब्दीली को जानते हैं? वो उसे यहाँ कागज पर देख सकते हैं और तब्दीली को समझते हैं।
But now what happens if the composer writes something and we find out that it isn't just acted outright? We find out then that there's something that happens. There's something like him when we see them.
लेकिन अब अगर मौसीकार कोई बात तहरीर करता है और हमें यह मालूम होता है कि ये ठीक तौर पर अदा नहीं की गई, तो क्या होता है? हमें मालूम होता है कि कोई ऐसी बात है जो वाकई हुई है, किसी चीज की कमी है जब हम उन्हें देखते हैं।
He who composed it is made it up and wrote it out, and then the symphony is playing it, hits a wrong note. There's something wrong. The director gave the wrong motion.
और जिसने इसे बनाया है और फिर जब सुर बजाया जा रहा होता है तो ये गलत मौसीकी पेश करता है। वहाँ कोई गलती है और हदायतकार ने कोई गलती की है।
See, that's what's the matter today, my Lutheran brethren, my Baptist brethren, my Pentecostal brethren, all my brethren from all different denominations. That's what it is.
देखें, और आज भी यही मसला है मेरे लूथरन भाइयों, मेरे बैप्टिस्ट भाइयों, मेरे पेंटिकोस्टल भाइयों, मेरे तमाम भाई जो मुख्तलिफ तंजीमों से हैं, आज यही मसला है।
See, you're trying to give a note that hit back in the days of Luther, Wesley, like that, when the music sheet here shows that it's another note.
देखें, आप कोशिश कर रहे हैं कि उस सुर को पेश करें जो लूथर वेस्ली के दिनों में बजाया जा रहा था, इस तरह जबकि दरअसल मौसीकी का सफा यहाँ दिखाता है कि ये एक दूसरा जमाना है। देखा, समझे?
We can't live in the light of Luther. He was a reformer. We appreciate his part, but we've played that out. We're way over here at the back of the book now. See, we can't play it out like that.
हम लूथर की रोशनी में नहीं जिंदगी बसर कर सकते। वो एक असलाकार था। हम उसके किरदार को पसंद करते हैं, मगर हम उसे बजा चुके। लेकिन यहाँ हम किताब के बिल्कुल पिछले आखिरी हिस्से में हैं, समझे? हम ऐसा नहीं कर सकते। हम इसे इस तरह नहीं बजा सकते।
Now, the only way that you're ever going to be able to do it, my brethren, is this. And brethren of the world, or the different parts of the world, I might say, there's only one way for that director to do.
अब वाहिद एक ही तरीका है आप ऐसा करने के काबिल बने। मेरे भाइयों, ये ऐसे है। तमाम दुनिया भर के भाइयों, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के भाइयों, मैं कह सकता हूँ इसका सिर्फ एक ही तरीका है उस हदायतकार के करने के लिए।
He has to get in the same spirit that the composer was in. Then he's got it.
हदायतकार को बिल्कुल उसी रूम में दाखिल होना है जो मौसीकार के अंदर थी, फिर वो इसे समझ सकता है।
And when the church, the symphony itself, where the worlds are watching for these signs and wonders, when the church and the composer and the director all get in the spirit of the composer,
और जब कलीसिया सुर मिला लेती है तो फिर दुनिया निशानों और अजीब कामों को उनमें देखती है। जब कलीसिया, हदायतकार और सब मौसीकार की रूह में आ जाते हैं।
Then when we say the days of miracles is past, it don't hit the right note. But when it gets in the right swing of it, in the right spirit of it, how are you going to do it until the spirit comes down of the composer? Amen.
और जब वो कहते हैं मौजजात के दिन तो गुजर चुके हैं, तो ये फिर दुरुस्त सुर नहीं बजाता। लेकिन जब ये बिल्कुल ठीक तरफ मुड़ता है और उसकी दुरुस्त रूह को लेता है, आप उसे कैसे कर सकते हैं जब तक मौसीकार की रूह में नहीं आते? आमीन।
Then when you say the days of miracles never pass, the symphony cries out, Amen.
جب آپ کہتے ہیں معجزات کے دن کبھی نہیں گزرے تو سر کا ملاپ چلا اٹھتا ہے آمین. جب ہم زور سے کہتے ہیں یسوع مسیح کل آج اور ابد تک یکساں ہے تو سر کا ملاپ چلا اٹھتا ہے آمین.
You shall receive power after this. The Holy Ghost has come upon you. The Gethsemane cries, Amen. I got it.
رول کچھ کے اترنے کے بعد آپ کو قوت ملے گی تو سر کا ملاپ چلا اٹھتا ہے آمین. میں نے اسے پا لیا.
There's no more guesswork about it then. The whole symphony is right in harmony with the word.
اب بعد میں اس کے متعلق کوئی اندازہ لگانے کی بات نہیں ہے کیونکہ سر کا ملاپ کلام کے ساتھ ملاپ رکھتا ہے.
That's it. Oh, it's a magnificent thing. The director and the composer must be in the same spirit, and so must the musicians be in the same spirit to act it all out. And the world is wondering what's going on.
اور یہ ہو رہا ہے. ارے یہ تو بڑی شاندار بات ہے. موسیقار اور ہدایت کار ضرور ہے کہ وہ ایک ہی روح میں ہوں, اور ضرور ہے کہ سب سازندے بھی ایک ہی روح میں ہوں, اور پھر دنیا حیران ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے.
The communism they talk about and they made me sick with it, and all this integration and everything else and segregation. Oh mercy, such all this nonsense. When the coming of the Lord is at hand, there's something hitting wrong.
وہ اشتراکیت کے متعلق گفتگو کرتے ہیں اور مجھے اس کے ساتھ پریشان کر دیا, اور یہ سارا جڑنا اور یہ سب کچھ اور یہ الگ ہونا, ہو رحم ہو. اس طرح یہ سب باتیں بیکار کی ہیں جبکہ خداوند کا آنا بہت قریب ہے. کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے.
I'm afraid that the director got, the directors got out of the spirit of the composer.
میں ڈرتا ہوں کہیں ہدایت کار موسیقار کی روح سے باہر نہ نکل جائے.
But we get that composer's spirit, that original power of God that the Bible said man of old was moved by the Holy Ghost to write this Bible. You'll see them two Chinese pieces of paper will come together just like God's Bible and a believer will come together.
جب ہم موسیقار کی روح کو لیتے ہیں جو خدا کی اصل طاقت ہے, چونکہ بائبل نے فرمایا گزرے زمانے کے لوگوں نے روح پاک کی تحریک سے اس بائبل کو لکھا, آپ ان دو چینی کاغذ کے ٹکڑوں کو اکٹھا ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اس طرح خدا کا کلام اور ایک ایماندار اکٹھے ہوں گے. کیونکہ وہ دونوں ایک ہی روح میں ہیں, وہ دونوں ایک ہی چیز ہیں, وہ علیحدہ کیے ہوئے ٹکڑے بالکل اکٹھے ایک دوسرے میں بیٹھتے ہیں.
What we need today is directors. That's right. Back to the word. Back and believe it, just as it said.
آج ہمیں ان ہدایت کاروں کی ضرورت ہے. یہ درست ہے, واپس کلام کی طرف واپس آ کر اس کا یقین کریں بالکل ویسے ہی جیسے کہا گیا ہے.
Then you see the God himself. That's the unveiling. The drama's made real.
تب آپ خود خدا کو دیکھتے ہیں. یہ پردے کا اٹھ جانا ہے, تب ڈراما حقیقت بن جاتا ہے.
Today they say, well, he's a historical God. We know he crossed the Red Sea. He did all this and he was in the fiery furnace with the Hebrew children.
آج وہ کہتے ہیں جی ہاں وہ ایک تاریخی خدا ہے, ہم جانتے ہیں اس نے بحر کلزم کو پار کیا, اس نے یہ سب کچھ کیا, اور وہ اس آگ کی بٹی میں عبرانی بچوں کے ساتھ تھا.
What good's a God of history if he isn't the same today?
تاریخ کا خدا کتنا اچھا ہے, کیا ایسا نہیں, کیا وہ آج یکساں نہیں ہے؟
Man is ever glorifying God for what he did do, thinking of what he will do and ignoring what he's doing.
انسان نے ہمیشہ سے خدا کو جلال دیا ہے جس کی خاطر اس نے ایسا کیا, یہ خیال کرتے ہوئے وہ نظر انداز کر رہا ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے.
That's just in man to do that. And it's the same thing today, my brother. It's the very same thing.
انسان میں صرف یہی ہے جو وہ کرتا ہے, اور میرے بھائیو آج بھی یہی بات ہے, بالکل یہی بات.
Oh my, let's get back and get the symphony playing right where we the world can see. Jesus said, if I be lifted up from this earth, I'll draw all men unto me. And he's the same yesterday, today and forever.
Oh, میرے عزیزو, آئیے واپس چلیں اور سر سنگم کو ٹھیک بجائیں جہاں دنیا کے لوگ اسے دیکھ سکیں. یسوع نے فرمایا اگر میں زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو میں تمام انسانوں کو اپنی طرف کھینچ لوں گا, اور وہ کل آج اور ابد تک یکساں ہے.
Let the directors get in the right spirit with the musicians and with the composer. Everything will be all right. Then we're no guesswork about it. We are identified with him, man.
हदायतकारों और साजिंदों को बिल्कुल ठीक मौसीकार की रूह में आने दें। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर हमें इसके मुतल्लिक अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं होती। तब हम उसके साथ शनाख्त किए जाते हैं। अब्रानियों 13:8 ने फरमाया, वो कल और आज बल्कि अब तक यक्सा है।
All he was, then, and all he is, all he was, and all he is, we are. Exactly.
हम उसके साथ इमाल 2 में भी शनाख्त किए जाते हैं। हम उनके साथ शनाख्त होते हैं, एक ही बपतिस्मे के साथ, एक ही बात के साथ। तब भी वो सब कुछ था, और वो सब कुछ है, वो सब कुछ था, वो सब कुछ है। इसी तरह हम हैं, ये बिल्कुल इसी तरह है।
Just like if I want to be a true American, I've got to be identified with everything she was, everything she is. I've got to be identified with it. If I am a true American.
जिस तरह अगर मैं एक सच्चा अमेरिकी बनना चाहता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मेरी शनाख्त उसकी हर चीज के साथ होनी चाहिए, जो अमेरिका की थी और जो उसकी है। मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी शनाख्त उसी के साथ बनाई है, कि मैं एक सच्चा अमेरिकी हूँ।
If I am a true American, then I landed on Plymouth Rock. Amen. I did. If I'm an American, so did you. You landed on Plymouth Rock with the Pilgrim Fathers.
अगर मैं एक सच्चा अमेरिकी हूँ, तो फिर मैं प्लेमाउथ चट्टान पर उतरा हूँ। आमीन। अगर मैं एक अमेरिकी हूँ, तो मैंने ऐसा किया, आपने भी ऐसा किया, आप भी प्लेमाउथ चट्टान पर अपने ज़ायरीन बुजुर्गों के साथ उतरे।
On Plymouth Rock, when they landed out there, I was with them. So was you, everybody.
प्लेमाउथ चट्टान पर जब वो वहाँ उतरे, मैं उनके साथ था, बस आप में से भी हर कोई वहाँ था।
I rode with Paul Revere right down the road to warrior danger. Exactly right.
मैं पॉल रिवर के साथ घोड़े की सवारी पर सवार हुआ, बिल्कुल सड़क से नीचे आया, ताकि लोगों को हर एक खतरे से खबरदार करूं। ये बिल्कुल दुरुस्त है।
Right down here at Valley Forge, I crossed the icy Delaware. With a bunch of soldiers who half of them didn't have shoes on.
बिल्कुल यहीं से वादिये फोरेज से मैं उस बर्फानी इलाका डेलावेयर में सिपाहियों के काफले के साथ गुजरा, जिनमें से आधों ने जूते भी नहीं पहने हुए थे।
I prayed all night with George Washington beforehand. I crossed the Delaware with a vision in my heart. We are Americans. Yes, sir, at Valley Forge. I certainly did.
मैंने सारी रात जॉर्ज वाशिंगटन के साथ हाथ खड़े करके दुआ की। मैंने डेलावेयर को अपने दिल में एक रोया के साथ पार किया, हम अमरीकी हैं। जी हाँ जनाब, वादी फोरज पर मैंने यकीनन यही किया।
I return thanks with the original Thanksgiving fathers. I return thanks to God. If I'm a real American, I was identified there at that table.
मैंने वापसी पर उन असल शुक्रगुजारी करने वाले बुजुर्ग खादमों के साथ शुक्रगुजारी की। मैंने फिर खुदा का शुक्रिया अदा किया। अगर मैं असल अमरीकी हूँ, तो मेरी उस मेज पर शनाख्त हुई थी।
If I'm a real American, I was identified when I stood with Stonewall Jackson. If I'm a real American, I was identified at the Boston Tea Party. Yes, sir, when we refused to have things pulled over our eyes.
अगर मैं असल अमरीकी हूँ, तो मेरी शनाख्त उस वक्त हुई थी जब मैं स्टोनवॉल जैक्सन के साथ खड़ा हुआ था। अगर मैं सचमुच अमरीकी हूँ, तो मेरी शनाख्त बोस्टन की चाय की दावत पर भी हुई थी। जी हाँ जनाब, जब हमने इनकार कर दिया उन चीजों को अपनाने के लिए जो हमारी आंखों की खुशनुमाई के लिए रखी गई थी। ठीक है, मैं जैसा कि असल अमरीकी हूँ, मेरी वहाँ इसी के साथ शनाख्त हुई थी। जी हाँ जनाब, हो मेरे अजीजों।
I rang the Liberty Bell the first 4th of July in 1776. I rang the Liberty Bell here and declared that we are independent. To be a real American, I had to.
मैंने आजादी की पहली घंटी 4 जुलाई 1776 में बजाई। मैंने आजादी की घंटी यहाँ बजाई और ऐलान कर दिया कि हम आजाद हैं। ये एक असल अमरीकी होते हुए मुझे करना था।
I was identified with her shame in the revolutionary. When brother fought against, I've got to bear her shame the same as I have to bear her glory. If I'm an American, I have to be. I was identified with her. Yes, sir.
انقلاب لانے والوں میں میری اس کی شرم کے ساتھ شناخت ہوئی تھی۔ جب بھائی ان کے خلاف لڑ رہے تھے، مجھے اس کی شرم بھی ایسے ہی برداشت کرنی ہے، بالکل جیسے میں اس کی شان میں شامل ہوا۔ اگر میں امریکی ہوں تو مجھے ایسا ہی ہونا ہے، میں اس کے ساتھ پہچانا گیا تھا۔ جی ہاں جناب، میری وہاں گیٹس برگ میں بھی شناخت ہوئی تھی جب لنکن نے اپنی تقریر پیش کی۔ جی ہاں جناب،
I was on Wake Island. Over that bloody soldier's body, I rose in Wake Island. On Guam, I helped hoist that flag.
ان لہو لہان سپاہیوں کے ساتھ میں ویک جزیرہ پر تھا۔ میں ویک جزیرے سے اٹھا گوام پر، میں نے اس جھنڈے کو لہرانے میں مدد کی۔
I'm a real American. Amen. Oh, she is. I am proud of it. Yes, indeed. All America has been, all she is. I'm still that to be American. Everything she was, I have to be because I'm identified with her.
میں ایک سچا امریکی ہوں، آمین۔ جو کچھ وہ ہے وہ میں ہوں اور اس پر فخر کرتا ہوں۔ جی ہاں، بے شک تمام امریکی وہی ہیں جو کچھ وہ ہے۔ امریکی ہونے کے لیے میں اب بھی وہی ہوں جو وہ سب کچھ ہے۔ مجھے بھی ہونا ہے کیونکہ میری اس کے ساتھ شناخت ہوئی ہے۔
Same thing by being a true Christian. You have to be identified with it.
ایک سچا مسیح ہونے میں بھی بالکل یہی بات ہے کہ آپ کی مسیح کے ساتھ شناخت ہو۔
I preached with Moses and with Noah and warned the people of the oncoming judgment to be a real Christian.
میں نے موسیٰ کے ساتھ منادی کی اور جنگ یا نوح کے ساتھ لوگوں کو آنے والی سزا سے خبردار کیا۔ ایک حقیقی مسیح ہونے کے ناطے میں نے یہ کیا۔
I was with Moses at the burning bush. I saw the pillar of fire. I saw his glory. I was with Moses up there in the wilderness. To be a Christian, I had to be identified with everything God was. To be a Christian.
میں جلتی ہوئی جاڑی میں موسیٰ کے ساتھ تھا۔ میں نے آگ کا ستون دیکھا، میں نے اس کا جلال دیکھا۔ ایک مسیحی ہوتے ہوئے میں وہاں بیابان میں موسیٰ کے ساتھ تھا۔ ایک مسیحی ہوتے ہوئے میری خدا کے ساتھ ان چیزوں میں جو اس کے پاس تھی شناخت ہونی چاہیے۔
I seen his glory. I heard his voice. Don't try to explain it away from me now, because I was there. I know what I'm talking about. I seen what happened. Yes, sir.
میں نے اس کا جلال دیکھا تھا، میں نے اس کی آواز سنی تھی۔ اب مجھے وضاحت کر کے اس سے دور ہٹانے کی کوشش مت کریں، کیونکہ سبب یہ ہے کہ میں وہیں تھا۔ میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں، میں دیکھ چکا ہوں کہ کیا ہوا۔ جی ہاں جناب،
I was at the Red Sea when I seen the Spirit of God move down and part the water from one side, not through a bunch of reeds that you're trying to say there, but through about a 90-foot sea. I seen the Spirit of God. I walked with Moses through that dry ground across that Red Sea.
میں بحر کلزم پر تھا جب میں نے خدا کے روح کو نیچے اترتے ہوئے اور پانی کو ایک طرف سے علیحدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، نہ کہ سرکنڈوں کے گچھوں کے وسیلے، جو وہ آج کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تقریباً 90 فٹ سمندر کے ذریعے سے دیکھا، میں خدا کے روح کو دیکھ چکا تھا۔ میں موسیٰ کے ساتھ بحر کلزم میں سے خشک زمین پر چل کر گزرا اور اس بحر کلزم کو پار کیا تھا۔
I eat manna with them out there. I drink from that rock. I'm still doing it tonight.
میں کوہ سینا کے قریب کھڑا ہوا اور گرج اور بجلی گرجتی اور چمکتی ہوئی دیکھی۔ میں نے ان کے ساتھ وہاں من کھایا، میں نے اس چٹان سے پانی بھی پیا۔ میں ابھی تک آج رات یہی کر رہا ہوں۔
I was identified with the manna eaters. I was identified with them that drunk from the rock. I was also identified when Joshua blew a trumpet and the walls of Jericho fell down.
میری من کھانے والوں کے ساتھ شناخت ہوئی، میری ان کے ساتھ بھی شناخت ہوئی جنہوں نے چٹان سے پانی پیا۔ میری اس وقت بھی شناخت ہوئی جب یشوا نے نرسنگا بجایا تھا اور یرہو کی دیواریں گر گئی تھیں۔
I was in the lion's den with Daniel. I was in the fiery furnace with the Hebrew children. I was with Elijah on Mount Carmel.
میں دانیل کے ساتھ شیروں کی مان میں بھی تھا، میں عبرانی بچوں کے ساتھ آگ کی بٹی میں بھی تھا، میں کوہ کرمل پر ایلیا کے ساتھ بھی تھا۔
I was with John the Baptist and before them critics. I seen the Spirit of God descending. I heard the voice of God say, this is my beloved son in whom I'm pleased to dwell in. Yes, sir, I sure was identified with him. That's exactly right.
میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ساتھ تنقید نگاروں کے سامنے تھا. میں نے خدا کے روح کو اترتے ہوئے دیکھا. میں نے خدا کی آواز کو کہتے ہوئے سنا، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. جی ہاں جناب، یقیناً میری اس کے ساتھ شناخت ہوئی. یہ بالکل ٹھیک ہے.
I was identified there at the grave of Lazarus when he raised up Lazarus. I was identified at the woman at the well when he told her sins. Yes, sir.
لازر کی قبر پر بھی میری شناخت ہوئی جب اس نے لازر کو زندہ کیا. میری شناخت کنویں پر اس عورت کے سامنے ہوئی جب اس نے اس کو اس کے گناہ بتا دیے. جی ہاں جناب.
I surely was identified with him in his death. And I was identified on the first Easter. I raised with him from death.
یقیناً میری شناخت اس کے ساتھ اس کی موت میں بھی ہوئی، اور میری شناخت پہلے ایسٹر پر بھی ہوئی. میں اس کے ساتھ موت سے جی اٹھا. میں اس کی موت میں بھی اس کے ساتھ شناخت کیا گیا.
I was with the 120 in the upper room. I was identified up there with them. I feel religious. Oh my! I was identified there. I'm one of them.
بالا خانے میں 120 کے ساتھ بھی تھا. میں وہاں ان کے ساتھ شناخت کیا گیا. ہو میں خدا میں محسوس کرتا ہوں. ہو میرے خدایا، میری وہاں شناخت ہوئی تھی. میں ان کے ساتھ تھا.
I was identified. I got the same experience they had. I was there when it happened to be a true Christian.
میری شناخت ہوئی تھی. مجھے بھی وہی تجربہ ہوا جو انہیں ہوا تھا. ایک سچا مسیح ہونے کے لیے میں وہی تھا جب ایسا ہوا.
I witnessed some mighty rushing wind coming. I witnessed that. I felt the power of God as it shook.
میں اس آنے والی بڑی آندھی کا گواہ ہوں. میں اس کا گواہ ہوں. میں نے خدا کی اس طاقت کو محسوس کیا جیسے ہی اس نے زور سے سب کچھ ہلا دیا.
I was with them spoken tongues. I felt the anointing coming. I was with them. I was identified with them. When the Holy Ghost began to speak through tongues with them.
میں ان کے ساتھ تھا جو غیر زبانوں میں باتیں کرتے تھے. میں نے وہاں اندر آنے والے مسا کو محسوس کیا. میں ان کے ساتھ تھا. میں ان کے ساتھ شناخت کیا گیا تھا، ان کے ساتھ جن سے رول کس نے غیر زبانیں بولنا شروع کی.
I was with Peter before the critics in Acts 2 when he preached a great sermon and I was identified with him. Yes, sir.
میں پترس کے ساتھ تھا اس سے قبل کے ایمال دو با پر تنقید کرتے جب اس نے عظیم واز کیا جو اس نے پیش کیا. میری اس کے ساتھ شناخت ہوئی. جی ہاں جناب.
And Acts 4, when they assembled together, I was with them when the building shook. At your prayer meeting, the building shook where they were sitting. I was identified there with them.
ایمال 4 میں جب وہ اکٹھے تھے میں ان کے ساتھ تھا. جب وہ عمارت ہل گئی دعایا عبادت کے بعد، وہ عمارت ہل گئی جہاں وہ اکٹھے بیٹھے تھے. میں وہاں ان کے ساتھ تھا.
I preached with Paul on Mars Hill. Yes, sir. I was with John on the Isle of Patmos and seen his second coming.
میں نے ہی مریخ کی پہاڑی پر پالوس کے ساتھ منادی کی. جی ہاں جناب، میں پتمس کے جزیرہ میں یوحنا کے ساتھ تھا اور اس کی دوسری آمد بھی دیکھی.
I was with Luther in the Reformation. I was with Wesley, that firebrand snatched from the fires when the great revolt against the Anglican Church. I was there with him.
میں کلیسیا کی تشکیل نو میں لوتھر کے ساتھ تھا. میں ویسلی کے ساتھ بھی تھا جو جلتی ہوئی لکڑی کے نشان کی طرح تھا، آگ سے کھینچ کر نکالا گیا جب بہت بڑی بغاوت اینگلیکن کلیسیا کے خلاف پھوٹ پڑی. میں وہاں اسی کے ساتھ تھا.
Here I am tonight, 1964, in Philadelphia, Pennsylvania, identified with the same kind of group, with the same kind of an experience. I must be to be a Christian. I must stay identified where the word of God is being manifested.
اور میری شناخت آج رات 1964 میں فلادلفیا پینسلوانیا کے اسی گروہ کے ساتھ ہوئی ہے. بالکل اس قسم کے تجربے کے ساتھ مجھے ضرور مسیح بننا اور ہونا چاہیے. ضرور ہے کہ میں شناخت شدہ ہوں جہاں خدا کا کلام ظاہر کیا جا رہا ہو.
I'm identified with a group that feels the Spirit of God. I'm identified with a group that knows He's unveiled, that knows He's the same yesterday, today, and forever, that knows that this is not a fanaticism. It's Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. I'm identified with that group here tonight.
میں ایسے گروہ کے ساتھ شناخت کیا جاتا ہوں جو خدا کے روح کو محسوس کرتا ہے. میں ایک ایسے گروہ کے ساتھ شناخت کیا جاتا ہوں جو یہ جانتا ہے کہ اس نے پردہ ہٹا دیا ہے. وہ جانتا ہے کہ وہ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے. वो जो जानता है कि ये मजबूत जोशो जज्बा नहीं, ये यीशु मसीह है जो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। आज रात मैं उसी ग्रोह के साथ शनाख्त किया गया हूँ।
Yet they're called a bunch of heretics, yet a bunch of fanaticism on account of the word of God.
जो अभी तक बिद्दती ग्रोह कहलाता है, फिर भी अभी तक जोशो जज्बे वाला ग्रोह है खुदा के कलाम की वजह से।
But I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. There's the power of God and the salvation of him.
मगर मैं यीशु मसीह की अंजील की खुशखबरी से शर्माता नहीं हूँ, क्योंकि निजात के लिए ये खुदा की कुदरत है और मैं उनमें से एक हूँ।
I'm with them living epistles I spoke of. Vindicated, God veiled in human form and men and women.
मैं उनके साथ जिंदा खत हूँ। मैंने ये साबित करके बोला है कि खुदा मर्दों और औरतों में इंसानी शक्ल में पर्दे में मौजूद है।
Oh God, in His Martha again, unveiled Himself and make Himself known to His people, the great King who laid aside His glory.
हो खुदा ने दोबारा अपनी अनदेखी सूरत से पर्दा हटा दिया है और अपने लोगों पर खुद को जाहिर कर दिया है, एक अजीम बादशाह जिसने अपने जलाल को अलग कर दिया।
Yet a little while and the world won't see me no more. I'll be veiled to them, but ye shall see me, for I'll be with you even in you, all the way to the consummation.
थोड़ी देर बाद दुनिया मुझे फिर न देखेगी, मैं उनके सामने से पर्दे में चला जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे देखोगे इस वास्ते कि मैं तुम्हारे साथ बल्कि तुम्हारे अंदर हूँगा सारे कलाम की तकमील के लिए।
Changing from Luther to Wesley to on and on, from glory unto glory, I'm still the same God. Going back to the original glory. Hallelujah.
लूथर से वेस्ली तक तब्दील होते हुए सिलसिला बा सिलसिला जलाल से जलाल तक मैं अब भी यकसा खुदा हूँ जो जिंदा था और वापिस अपने असल जलाल में जा रहा हूँ। हालेलुया।
He has broken every denominational veil, every sound barrier. That sound that says, oh, that's fanaticism. He broke right through that. The sound that came out of there said, oh, that people are crazy. He broke right through that veil. Yes, he did.
उसने हर एक तंजीमी पर्दे को चाक कर दिया है, हर एक आवाज की रुकावट को भी। वो आवाज जो कहती है, हो, ये मजबी जोशो जज्बा है, उसने उसे तोड़ दिया है। वो आवाज जो वहाँ से आती थी, कहा, हो, ये लोग पागल हैं, उसने बिल्कुल ठीक पर्दे को चाक किया है। जी हाँ, उसने ऐसे किया।
Oh, you can't do it, you know, but a bunch of fanatics. He broke right through that. No such a thing as divine healing. He broke right through that. Oh, my! For His word said He would. You can't conquer the word of God.
Oh, आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आप सिर्फ मुतहस्सब गुरु के सिवा कुछ भी नहीं हैं। उसने उसे तोड़ दिया कि इलाही शिफा जैसी कोई चीज नहीं। उसने इस बात को ठीक खत्म कर दिया। हो मेरे खुदाया, चूंकि उसका कलाम फरमाता है वो ऐसा करेगा। आप खुदा के कलाम को फतह नहीं कर सकते।
There he stands yet tonight, the mighty conqueror, since he broke every Methodist, Baptist, Presbyterian, every other kind of a veil. He still stands among his people tonight, unconquered by traditions.
आज रात भी वो ताकतवर फाते अभी तक वहीं खड़ा है, क्योंकि उसने हर मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और हर किस्म के पर्दा को चाक कर दिया है। वो अब भी आज रात अपने लोगों के दरमियान खड़ा है ताकि रसूमात को शिकस्त दे।
Let people say what they want to, do what they want to, anything they want to. God comes breaking right through that sound there.
लोगों को कहने दें जो वो कहना चाहते हैं, करने दें जो वो करना चाहते हैं, जो कुछ भी वो चाहते हैं। उस आवाज की रुकावट को तोड़ते हुए खुदा आता है।
And remember, they tell me when a plane really breaks that sound barrier, is no limit to its speed.
और याद रखें, वो मुझे बताते हैं, जब एक जहाज सचमुच उस आवाज की रुकावट को चीरता है, तो उसकी रफ्तार की कोई हद नहीं रहती।
Now I'm telling you, when you break that traditional barrier, that Jesus is way back and He is now, when you find He's the same yesterday and forever, there's no limit to what God will do right here in this convention and show this world what they need.
मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप उस रस्मी रुकावट को तोड़ देते हैं तो यीशु ही वापसी का रास्ता है। और क्या वो अब नहीं है, जबकि आप जानते हैं कि वो कल, आज और अब तक यकसा है। उसकी कोई हद नहीं है। खुदा इस कन्वेंशन में यहाँ क्या कर सकता है और दुनिया को दिखाए जिसकी उन्हें जरूरत है।
And morphing daily himself into human flesh. Hallelujah. Hallelujah. I believe it.
نہ کہ دنیا کا میلہ مگر دنیا کی بیداری جو کہ زندہ خدا کی حضوری اور بپتسمے سے بردے پوشیدہ خدا خود انسانی جسم کے پردے میں چھپا ہوا ہے. ہللویا, میں اس کا یقین کرتا ہوں.
Broken every barrier, every veil, nothing can hide his presence.
ہر ایک رکاوٹ, ہر ایک پردہ, ہر پردہ چاک کر دیا گیا ہے. کچھ بھی اس کی حضوری سے چھپ نہیں سکتا.
When people get hungry in their heart, there's a veil ready to be broke. You can just depend on that. Rend every veil by his great Holy Spirit.
جب لوگ دلی طور سے اس کی بھوک رکھتے ہیں تو یہ پردہ چاک ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آپ صرف اسی پر بھروسہ رکھیں, اس کے عظیم پاک روح سے ہر ایک پردہ چاک کیجیے.
Here he stands tonight, the mighty conqueror. Same yesterday, today, and forever. Healing the sick, baptizing the believers, just as he always did. He's the mighty conqueror.
آج رات وہ طاقتور فاتح یہاں کھڑا ہے جو کل, آج, بلکہ اب تک یکساں ہے. بیماروں کو شفا دینے والا, ایمانداروں کو بپتسمہ دینے والا, جس طرح اس نے ہمیشہ سے کیا, وہ طاقتور فاتح ہے.
Doom devils are on the run. Yes, sir. They always are when he's around.
بدبخت ابلیس بھاگ رہے ہیں. جی ہاں جناب, وہ ہمیشہ ہی بھاگ جاتے ہیں جب وہ یہاں موجود ہوتا ہے.
Closing, you might say this. There was a read a story many years ago about an old violinist. He had an old violin he was going to sell. You've heard the story many times.
ختم کرتے ہوئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں, بہت سال پہلے میں نے ایک کہانی پڑھی تھی ایک بوڑھے سرنگی نواز کے متعلق. اس کے پاس ایک پرانی سرنگی تھی, وہ اسے فروخت کرنے جا رہا تھا. آپ نے یہ کہانی بہت مرتبہ سنی ہے.
And they wanted to sell it for a certain thing. And the auctioneer said, who will give me so and so? And I believe he's offered a few coins, maybe 50 cents or something. Going once, going twice.
وہ اسے ایک خاص چیز کی خاطر فروخت کرنا چاہتا تھا, اور نیلام کرنے والے نے کہا کون مجھے فلاں فلاں قیمت دے گا. مجھے یقین ہے اسے چند سکوں کی پیشکش ہوئی ہوگی, ہو سکتا ہے 50 سینٹ یا وغیرہ وغیرہ. ایک بار پھر کہا گیا, دوسری بار پھر کہا گیا.
Directly a man raised up in the back. He said, just a minute. He walked up and got it. Let's think. If he played this, there is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins. When sinners plunge beneath the flood, lose all their guilty stains.
برائے راست پیچھے سے ایک شخص کھڑا ہو گیا. اس نے کہا ایک منٹ. وہ چل کر وہاں آیا اور اسے لے لیا. چلیں ایسا خیال کرتے ہیں اس نے یہ بجایا, ایک چشمہ جو کہ لہو سے بھرا ہے وہ ایمینول کی نسوں سے نکلا ہے. جب گناہ گار اس لہو میں ڈوب جاتے ہیں تو ان کے گناہ کے دبے مٹ جاتے ہیں.
Then when he laid it down, there was a dry eye in a place. Then he said, who offered? One said 5,000, 10,000. It was priceless. Why? The old master of the violin had revealed its true quality.
پھر جب اس سرنگی کو نیچے رکھ دیا گیا تو اس جگہ ہر آنکھ اشک بار تھی. تب اس نے کہا کون قیمت لگائے گا. ایک نے کہا 5,000, 10,000. یہ انمول بات تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس بوڑھے سرنگی کے مالک نے سرنگی کی اصل خوبی کو ظاہر کر دیا تھا.
Oh, brother, sister, now let the master of this world who wrote it, the great Holy Spirit, raise up his bow with love and pull it across your heart.
او بھائیوں اور بہنوں, اب ہم اس کلام کے مالک کو موقع دیں جس نے اسے لکھا ہے. وہ عظیم روح پاک جس نے اپنی کمان کو محبت سے اٹھایا ہے اور آپ کے دلوں کے آر پار اسے کھینچ دیا ہے.
There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's vein. You'll see the full value and see the unveiled God come out in view.
ایک چشمہ جو لہو سے بھرا ہے, ایمینول کی نسوں سے نکلا ہے. آپ اس کی پوری قیمت کو دیکھیں اور آشکارا خدا کو بالکل نظر آنے والے کی طرح دیکھیں.
He just the same as he was when he fell on the day of Pentecost upon the people, when he kenosity self emptied right into him. That's right.
جیسا کہ وہ بالکل یکساں ہے جس طرح وہ پینتیکوس کے دن لوگوں پر آ ٹھہرا جب اس نے خود کو ان کے اندر انڈیل دیا. یہ درست ہے. آپ کہتے ہیں بھائی برینم, میں کوشش کر چکا ہوں, میں کوشش کر چکا ہوں, میں یہ سب کچھ کر چکا ہوں.
One day I was having a meeting at Carlsbad, New Mexico, and we went down in this big old
bat den down there, and it was kind of spooky looking. And we got down there.
एक दिन मेरी कार्लस बेट न्यू मेक्सिको में एक इबादत थी और हम वहां नीचे पुरानी चमगादड़ों की मांद में चले गए और ये एक किस्म के भूत घर की तरह नजर आ रही थी और हम वहां गए.
The man, when he got down there, this place, he snapped the lights off, and oh my, you can imagine how dark it was. It's so dark you could feel it.
और वो आदमी जब वहां नीचे उतर गया उस जगह में उसने झपट कर बत्तियां बंद कर दी. हो मेरे खुदाया, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये कितना अंधेरा था. ये इतना ज्यादा अंधेरा था कि आप उसे महसूस कर सकते थे.
That's just about the way the times are getting. When we see the church that fails to recognize God's word.
ये तकरीबन ऐसे ही है जैसे कि दिन आ रहे हैं जबकि हम देखते हैं कि कलीसिया खुदा के कलाम को पहचानने में नाकाम है.
When you see our daughters of Zion doing the way they're doing.
जब आप देखते हैं कि हमारी सायून की बेटियां उस तरीके कार पर अमल करती हैं जिस पर वो चल रही हैं.
When you see our brothers that smokes and drinks and tells dirty jokes and things is still trying to hold their confession in Christ. Oh my, it's dark, it's pitch dark.
जब आप हमारे भाइयों को शराब और सिगरेट पीते देखते हैं और गंदे लतीफे सुनाते हुए और गंदी बातें करते हुए और फिर भी अभी तक कोशिश में लगे हुए हैं कि मसीह में अपना इकरार कायम रखें. ओ मेरे खुदाया, ये कितना अंधेरा है, ये तो खौफनाक अंधेरा है.
We see the sign of his coming. It's always darkest just before day. Then the morning star comes out to hail the day and hurl and show that it's coming.
हम उसकी आमद की निशानी को देखते हैं. ऐसा ही है, दिन निकलने से पहले हमेशा ही अंधेरा होता है, फिर सुबह का सितारा नमूदार होता है दिन को सलाम पेश करने के लिए और इसका ऐलान करने के लिए, ये जाहिर करते हुए कि वो आ रहा है.
Notice, in there, when they turn that off, there's a little girl just screamed to the top of her voice, and there's a little boy standing by the guide, and he's seen that guide when he switched the lights off like that.
गौर करें, वहां अंदर जब उन्होंने बत्तियां बंद कर दी, एक छोटी लड़की अपनी बुलंद आवाज से चला उठी और एक छोटा लड़का भी वहां पर गार्ड के साथ खड़ा था और उसने उस गार्ड को देखा जब उसने वो बत्तियां बंद की थी.
And that little sister is just about to have a fit. She's screaming, jumping up and down. Oh, what's going to happen next? What's the matter? What's the matter?
और वो छोटी बहन तकरीबन बेहोश होने को थी और ऊपर नीचे छलांगे लगा रही थी. हो, आगे क्या होने को है? मसला क्या है? मसला क्या है?
You know what he screamed? He said, "Don't fear, little sister. There's a man here who can turn on the lights." Listen, little sister, you might think we're small and in the minority, but don't fear, there's a man here who can turn on the lights. That's the Holy Spirit.
आप जानते हैं, गार्ड ने उससे कहा, उसने कहा, खौफ मत खाओ छोटी बहन, एक शख्स यहाँ है जो बत्तियां जला सकता है. सुनिए प्यारी बहन, शायद आप सोचती हो कि हम थोड़े से हैं, मगर खौफ ज्यादा ना हो, यहाँ एक ऐसा शख्स भी है जो बत्तियां जला सकता है और वो रूल कुछ है.
You believe him? Let us bow our heads just a moment. I'm sorry to keep you.
क्या आप इसका यकीन करेंगे? आए, हम एक लम्हा के लिए अपने सरों को झुकाते हैं. मैं माजरत चाहता हूँ कि मैंने आपको रोके रखा.
Oh great God of heaven, unveiling yourself, unfolding yourself, making yourself known, the great King of glory, take these little illustrations tonight and let them fall down at the hearts of the people.
ऐ आसमान के अजीम खुदा, खुद को आश्कारा करने वाले, खुद को आयां करने वाले, खुद को जाहिर करने वाले जलाल के अजीम बादशाह, आज की रात इन छोटी तमसीलों को ले ले और इन्हें लोगों के दिलों पर गिरने दे.
And may we see that unveiled one, that one who came down and rent the veil of the temple.
हो सके तो हम उस आश्कारा को देख सकें जो नीचे उतर कर आया और हैकल के पर्दा को चक कर दिया.
And then went right out of that veil, come right down into human veils again on the day of Pentecost. Has ever been the same, changing from glory to glory.
और फिर बिल्कुल पर्दे से बाहर निकलकर पेंतीकोस के दिन पर दोबारा इंसानी पर्दे के अंदर आ गया. वो हमेशा से यकसा है, जलाल से जलाल में तब्दील होते हुए.
And now we're right back, like all nature acting, right back to the original seed. Right from one church age to another.
और अब हम बिल्कुल वापिस आते हैं जिस तरह तमाम कुदरत अमल करती है वापिस बिल्कुल असल बीज की जानी बातें हैं, बिल्कुल एक कलीसिया के दौर से दूसरी कलीसिया के दौर में।
And in this last stage here, here we are right back to the original thing that fell on the day of Pentecost to fulfill every scripture.
और इस आखिरी दौर में हम यहाँ हैं, बिल्कुल असल चीज की जानी वापिस जाना है, जो पेंतीकोस्त के दिन पर नाजल हुई, कलाम की हर आयत को पूरा होना है।
The light in the evening time and the works that I do shall you also so many things that you promised in your word.
यानी शाम के वक्त रोशनी और वो काम जो मैं करता हूँ वो काम तुम भी करोगे और बहुत सारी बातें जिसका तूने अपने कलाम में वादा किया है।
Father, if there be one here who has never broke through that veil yet, or if there be one here who's just impersonated someone who has went through the veil, give grace tonight, Father.
ऐ बाप, अगर कोई है जिसने अभी तक पर्दे को चाक नहीं किया, या अगर कोई ऐसा शख्स है जिसने किसी शख्स की नकल की हो जो पर्दे के अंदर से होकर आया हो, ऐ बाप आज रात अपना फजल अता कर।
May they see that mighty conqueror standing here, full of grace and power to forgive. Grant it, Father.
ये कातरे मुतलिक फाते को यहाँ पर खड़े हुए देख सकें, जो फजल और कुदरत से मामूर होकर माफ करने वाला है, ऐ बाप ये बख्श दे।
And while our heads are bound, would there be some in here, how many might I say that, would say, Brother Branham, I'm lifting my hand. Pray for me. Just keep your head bowed and raise your hand.
और जबकि हमारे सर झुके हुए हैं, क्या कोई यहाँ पर मौजूद है? कितने हैं? मैं कह सकता हूँ जो कहें, भाई ब्रैनम, मैं अपना हाथ उठा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करें, अपना सर झुकाए रखें और अपना हाथ उठाएं।
I want to break through every veil that I can really see the conqueror. God bless you. My the hands.
मैं हर एक पर्दे को चाक करना चाहता हूँ, जब तक मैं सचमुच फाते को साफ ना देख सकूं। खुदा आपको बरकत दे, कहें मेरे हाथों को थाम ले।
Up in the balcony to the right. God bless you. Balconies to the back. God bless you. Be real honest.
बिल्कुल ऊपर बालकनियों में। क्या ऊपर बालकनियों में? ठीक है, खुदा आपको बरकत दे। बालकनियों में पीछे क्या है? उठें, खुदा आपको बरकत दे, दयानतदार रहें।
To the left, raise your hand, say, Brother Bram, I might have been a Christian for years, but really, I've never come through that veil. I've really never done it. I haven't got that what they had then.
बाएं जानिब से क्या कोई है? अपना हाथ उठाएं, कहें, भाई ब्रैनम, मैं सालों से एक मसीही रहा हूँ, लेकिन असल में कभी भी उस पर्दे में से होकर नहीं गुजरा। मैंने दर हकीकत ये कभी नहीं किया, मैंने वो कभी नहीं पाया वो जो उन्हें तब मिला था।
Today we got, I'm a hotbed plant. Take a flower that's raised in a hotbed. You have to bathe it, pet it, spray it, water it.
आज हमें मिल गया, मैं एक गर्म क्यारी में बोया गया पौधा हूँ। एक ऐसा फूल लें जो गर्म क्यारी में बोया जाता है, आपको उसकी देखभाल करनी है, उसे पालना है, उसे पानी लगाना है और स्प्रे करना है।
But that original plant that grows out there on the desert, same kind of a flower, looks like it. It don't get a bit of water, but no bugs get on it. It's rugged. It's a real.
लेकिन वो असल पौधा जो उधर बाहर रेगिस्तान में उगा हो, बिल्कुल उसी किस्म का फूल, उसी किस्म का नजर आता है। उसे थोड़ा भी पानी नहीं मिला, लेकिन उस पर कीड़ा भी नहीं। ये उम्दा किस्म है, ये असली है।
Could you compare Christianity today with what it was then? Could you imagine this group, what we call Christians today across the world, being like those was after Pentecost?
क्या आप उस मसीहत का आज की मसीहत से मुवाजना कर सकते हैं? तब वो किस तरह की थी? क्या आप इस ग्रोह का तसव्वुर कर सकते हैं जिन्हें हम दुनिया भर में मसीही कहते हैं, उनके साथ जो पेंतीकोस्त के दिन थे?
Babied and patted and from one church to another and say something you don't like, get up and walk out. No, oh, could you imagine that? No. What is the matter? It's a reproduction.
शीरखार और थपकी देने वाले और एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया में और कुछ कहना आप पसंद नहीं करते, उठें और बाहर चलें। और हो, क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं? नहीं, क्या मसला है? ये असल नहीं है।
Michelangelo, that created the monument of Moses. You can get a reproduction of that very cheap, but the original.
Michelangelo, जिसने मूसा की यादगार बनाने की कोशिश की, आप उसकी नकल बड़ी सस्ती हासिल कर सकते हैं, मगर असल नहीं।
The one who painted the Lord's Supper. I guess that original painting would run into millions of dollars if you could even buy it. I don't even know where it's at. But you can buy a cheap reproduction of it for about $1.98. You can.
वो शख्स जिसने खुदावंद की शायरबानी वाली तस्वीर बनाई, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि अगर आप उसे खरीदते तो वो असल तस्वीर लाखों डॉलर में मिलती। मैं नहीं जानता वो अब कहाँ है, मगर आप उसकी नकल सस्ती तकरीबन $1.98 में खरीद सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं।
And that's the way it is today. A cheap Christian, a reproduction, just a church joiner. You can buy them out for a cigarette or a common drink.
और बिल्कुल ऐसा ही आज है। एक सस्ता मसीही एक नकल है, सिर्फ एक कलीसिया में शामिल होने वाला। आप इसे बाहर ही खरीद सकते हैं, एक सिगरेट देकर या एक शराब की बोतल देकर।
Or for a woman with cut hair, painted lips, you can buy her for anything in the fashions of the world, but you can't touch that genuine.
या एक कटे हुए बालों वाली औरत या होंठों पर सुर्खी लगी हुई औरत, आप उसे दुनिया के किसी भी फैशन के साथ खरीद सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल असल को छू भी नहीं सकते।
In full view, the same yesterday, today, and forever. Oh, Christian, don't you want to be a real Christian?
मैं उसे पूरी तरह से देखता हूँ कि वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। ओ मसीहो, तुम क्यों असल मसीही नहीं बनते?
If there's any didn't raise your hands, will you do it while I'm just going to pray? God bless you. God bless you. Oh, that's just fine. Just look at that.
अगर कोई है, तो तुमने अपना हाथ ऊपर क्यों नहीं उठाया? क्या आप ऐसा करोगे? ठीक है, मैं अभी दुआ कर रहा हूँ। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको बरकत दे। हो, यही अच्छा है, सिर्फ इसी पर निगाह रखें।
Our heavenly Father, thy word shall not return to thee void. You as the one made the promise, I'm only responsible for saying that you said it. I'm just repeating your words.
हमारे आसमानी बाप, तेरा कलाम बेतासीर वापस नहीं आता। खुदावन, तू ही वो है जिसने वादा किया। मैं तो सिर्फ ये कहने का जुम्मेदार हूँ, मैं सिर्फ तेरे अल्फाज दोहरा रहा हूँ।
You said, he that heareth my word and believeth on him that sent me has eternal life. You promised it.
तूने फरमाया, वो जो मेरे कलाम को सुनता है और मेरे भेजने वाले पर ईमान लाता है, उसमें हमेशा की जिंदगी है। तूने इसका वादा किया है।
And Lord, we know we have them reproductions today. Many that say they believe when they don't, it shows up. But Lord, there's some genuine too.
खुदावंद, हम जानते हैं कि आज भी इनके पास बहुत से नकाल हैं, बहुत से जो कहते हैं कि वो यकीन रखते हैं, जबकि वो यकीन नहीं रखते। ये दिखावा है, लेकिन खुदावंद, यहाँ कुछ असल भी हैं।
I pray that you just grant in here tonight that every man and woman, boy or girl, no matter what nation they are, what color they are, what church they belong to, oh God, fill them.
मैं दुआ करता हूँ कि तू अता कर कि आज रात यहाँ हर मर्द और औरत, लड़का और लड़की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस कौम से हैं, किस रंग के हैं, वो किस कलीसिया से ताल्लुक रखते हैं, ऐ खुदा उनको भर दे।
May they see the real manifestation of that same Jesus today right among us as he was at the day of Pentecost when he revealed himself for this age being the Holy Ghost.
वो आज बिल्कुल उसी यीशु को असल जहूर में देख सकें जो बिल्कुल हमारे दरमियान मौजूद है, जैसे वो पेंतीकोस के दिन पर था जब उसने खुद को इस जमाने के लिए रूल कुछ के तौर पर जाहिर किया।
Seeing the words fulfilled, the prophecies come to pass.
बख्श दे, कलाम को पूरा होते हुए और नबूवतें पूरी होती हुई लोग देखें।
We compare today what's called the Church of the World or the World Council of Churches. And compare that with a promise on Pentecost.
क्या आज हम मुवाजना करते हैं दुनिया की कलीसिया का, जो वो कहते हैं, यानी कलीसियों की आलमी काउंसिल, क्या हम उसका पेंतीकोस के वादे के साथ मुवाजना कर सकते हैं?
There is no comparison at all. We cannot get our dirty clothes washed on that ticket.
बिल्कुल मुवाजना नहीं कर सकते, इस टिकट पर अपने गंदे कपड़े नहीं दलवा सकते।
But Lord God, if we'll come back to that fountain, there's a cleansing process. Then our experience and God's word will match one another. Then we can claim our possession.
लेकिन खुदावंद खुदा, अगर हम वापिस उस चश्मा पर आ जाएं, तो वहाँ एक दुलाई का तरीकेकार जारी है। तब हमारा तजर्बा और खुदा का कलाम एक दूसरे से इत्तफाक करेंगे, फिर हम अपनी मलकियत का दावा कर सकते हैं।
Grant it, Lord, tonight as I commit these people in your hands. Give to each one what we have need of, Father. We ask in Jesus' name. Amen.
खुदावन, आज रात ये अता फरमा, जैसे मैं इन लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, ऐ बाप, हम में से हर एक को हमारी जरूरत के मुताबिक बख्श दे। हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।
God bless you. Thank you a lot for standing and waiting a long time. And I'm sorry I kept you to 10 minutes after 10. God be with you till I see you in the morning. I turn the service now to, I suppose, to master sermon.
खुदा आपको बरकत दे। खड़े होने के लिए और देर तक इंतजार करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं माजरत चाहता हूँ कि मैंने आपको 10:10 तक रोके रखा। खुदा आपके साथ हो और मैं आपको सुबह मिलूंगा। अब मुझे इबादत का रुख मेरे ख्याल में इबादत के उस मालिक की जानिब मोड़ना चाहिए।